कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ, धर्म राज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े तो वह पछताना, पड़े तो वह पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े तो वह पछताना, पड़े तो वह पछताना। कर्म करो ऐसे भा पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो।
ओम शांति। कर्मों की गहन गति, कर्मों का ईश्वरीय ज्ञान। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो कर्मों के बंधन में न बंधा हो। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों को कर्मों की गति का सत्य अथवा संपूर्ण ज्ञान नहीं, वरना वे उसके बंधन में न बंधते। कर्मों से सदा मुक्त तो एक परम पिता परमात्मा ही है, उन्हें ही कर्मों की गहन गति का पूर्ण ज्ञान भी है। अतः वे ही मनुष्य को सत्य ज्ञान देकर तथा योग सिखलाकर बंधनों से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। उन्हीं द्वारा प्राप्त ज्ञान हम इस चर्चा में उल्लेख करेंगे। विषय बड़ा गंभीर है और चर्चा के लिए नियुक्त जो हमें समय दिया गया है वो थोड़ा कम है, इसलिए इसमें ज्ञान को हम अत्यंत संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करेंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म, पाप और पुण्य अथवा कर्म और विकर्म की परिभाषा को लेकर चीरकाल से संसार में विवाद होता चला आया है। कुछ एक लोग जिनका कि कहना है कि पाप और पुण्य का वस्तुतः कुछ भी भेद नहीं है, भेद केवल अपनी दृष्टि अथवा मान्यता का है। कुछ लोग जिस कर्म को पाप मानते हैं उसे ही कुछ अन्य लोग पुण्य मानते हैं। अतः प्रश्न उठता है कि इसका निर्भ्रांत रीति से ज्ञान क्या है। पुनश्च कर्म से संबंधित अन्य प्रश्नों का समाधान क्या है। उदाहरण के तौर पर, क्या कर्म फल भोगने के लिए योनि परिवर्तन होता है, या स्वर्ग और नरक नाम वाले किसी लोक विशेष में गमन आगमन करना पड़ता है। इन सभी प्रश्नों पर शिव बाबा ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है। उस ज्ञान सागर के अथाह ज्ञान में से ली गई ज्ञान गागर से हम यहां कुछ ज्ञान बिंदु पिपासु आप आत्माओं को अर्पित कर रहे हैं। कर्म का संबंध देश और काल से। इस संसार में जो भी मानवीय कर्म होते हैं उसको समझने के लिए उसके समय और स्थान या समाज को भी जानना जरूरी होता है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि हर एक चित्र की कोई ना कोई पृष्ठभूमि अवश्य होती है। देयर इज नो पिक्चर विदाउट अ बैकग्राउंड। इसी प्रकार यह भी शाश्वत सत्य है कि कर्म का देश, काल अथवा सामाजिक वातावरण यानी सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से भी संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर, जिस समाज में धनी और निर्धन लोग दो वर्ग हो, वहां ही चोरी, शोषण इत्यादि होने की संभावना अथवा अधिक संभावना होती है। जिस देश, समाज या काल में आर्थिक स्तर ही जीवन का सर्व प्रमुख मूल्य रखता हो, उस देश काल समाज के लोग धन को ही सर्वोपरि महत्व देते हुए येन क्रेन प्रक्रेन धन एकत्रित करने का यत्न करते हैं और इसीलिए वहां रिश्वत चोर बाजारी इत्यादि जैसे घृणित कर्म भी कर लेते हैं। जिस देश काल जाति में वीरता साहस और शारीरिक क्षमता का बोलबाला हो वहां जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट अथवा बंदूक की नली ही सर्वशक्ति प्रदायक है। पावर कम्स फ्रॉम अ बैरल ऑफ अ गन। कर्म नीति इस मतव्य पर आश्रित होती है। जिस समाज में सभी लोग तृप्त हो उनके पारस्परिक संबंध भी अति निकटता के तथा स्नेह युक्त हो उस समाज में लूट खसोट या चोरी चकारी नहीं होती। हमारे यहां यथा राजा तथा प्रजा की युक्ति भी प्रसिद्ध है। यदि राजा लोकप्रिय हो, चरित्रवान हो, जनता की भलाई के लिए कार्य करने वाला हो, नैतिकता के आचरण में पूर्ण आस्थावान हो तो उस देश में तथा उस शासन काल में लोग बुराइयों से बचकर रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का समाज पर तथा समाज का व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों को समवित्व करते हुए परमपिता परमात्मा शिव ने इस अनादि सृष्टि में एक इतिहास चक्र माने हिस्ट्री साइकिल का उल्लेख किया है। मानवीय कर्मों के आधार पर समूचे ऐतिहासिक काल को 5 युगों में विभाजित किया गया है। जैसे किसी पतीले में पकते हुए चावलों में से हम चिमचे में थोड़े ही बाहर निकालकर उनमें से 2-4 को देखने से ये जान जाते हैं कि चावल गल गए हैं या नहीं, वैसे ही शिव बाबा भी संसार में कुछ एक व्यक्तियों को उस काल के प्रतीक मानते हुए अथवा कर्म नायक, मत स्थापक, धर्म प्रेरणता, युग परिवर्तक अथवा संप्रदाय संस्थापक मानते हुए कर्म का ज्ञान भी देते हैं। वास्तव में ये सभी मत स्थापक एक अटूट श्रृंखला की कड़ियां माने लिंक ऑफ द चैन ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं। समाज के कारण और परिणाम की ऐतिहासिक भीति पर अथवा व्यक्ति और समाज तथा समाज और व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया का यह फल होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के नमूनों को देखने से, सैंपल सर्वे से निष्कर्ष निर्धारित किए जाते हैं, वैसे ही विश्व नाटक में इन व्यक्तियों यानी प्रिंसिपल एक्टर्स से एक नई ऐतिहासिक धारा को जान सकते हैं और उससे ही तत्कालीन नर नारियों के कर्म की स्थिति से भी परिचित हो सकते हैं। हम जिसे श्रेष्ठ कर्म अथवा सत्कर्म कहते हैं उसकी भी बहुत सी कलाएं होती है और जिन्हें हम विकर्म की संज्ञा देते हैं उसके भी अनेक अंतर यानी शेड्स होते हैं। इन मत स्थापकों के प्रतीक द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म और विकर्म की भी कलाओं का बोध होता है। गोया यह उस काल की कर्मिक स्थिति के थर्मामीटर पर की डिग्रियां हैं, परंतु यहां इस छोटी सी चर्चा में इन सब का विस्तृत उल्लेख करना संभव नहीं है। हम यहां मोटे तौर पर विश्व इतिहास के संदर्भ में कर्म तथा विकर्म का भेद बताएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद। शिक्षण के तरीकों में कहा गया है कि कोई नई बात को बताने के लिए हमें ज्ञात बात से शुरू करके अज्ञात बात तक अपनी व्याख्या को ले जाना चाहिए। इस सूक्ति के अनुसार हम पहले वर्तमान युग से ही प्रारंभ करते हैं। इस युग में जो मुख्य धारा बह रही है, जिसमें कि समूचा जनमानस डूब सा रहा है, वह अनैतिकता ही है। मनुष्य आज नैतिक अंकुश को नहीं मान रहा, वह आध्यात्मिक मूल्यों को अपनी उन्नति में बाधा समझता है, कई धार्मिक ग्रंथों की बातों को विज्ञान द्वारा गलत सिद्ध किए जाने के कारण भी बहुत से लोगों की धर्म पर, यद्यपि आज धर्म सच्चे स्वरूप में नहीं है, फिर भी उनकी आस्था उठ गई है। कई लोग विज्ञान को तथा अन्य कई धन को ही भगवान मानते हैं। तीसरी प्रकार के लोग शासन सत्ता से अतिरिक्त किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा को नहीं मानते। वे आहार व्यवहार की सात्विकता के नियमों को खामखा के बंधन मानते हैं। जो थोड़ी बहुत भक्ति और पूजा होती भी थी, उसे भी लोग सौदाबाजी, कमाई, दिखाई तथा दिल बहलावे का रूप दिए हुए हैं। ऐसे वातावरण में मनुष्य आज जो भी कर्म अज्ञानतावश कर रहा है, वे घोर विकर्म ही है। यों जो कोई भी व्यक्ति देह अभिमानी है, अर्थात स्वयं को आत्मा न मानकर पंच भौतिक शरीर माने हुए है और परमपिता परमात्मा से प्रीति जोड़ने के बजाय कर्म इंद्रियों के विषयों के आकर्षण में बंधा हुआ है, वह विकर्मी करता है। तभी तो आज उसके फलस्वरूप मानसिक तनाव, अशांति और दुख है। इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में जो लोग परमपिता परमात्मा से आत्मा, परमात्मा, सृष्टि, कर्म, साधना इत्यादि के विवेक सम्मत एवं यथा सत्य ज्ञान प्राप्त करके योग युक्त हो, अर्थात आत्मिक स्मृति में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, उनके कर्म सत्कर्म है। चूंकि अब वे विकारी से निर्विकारी तथा पतित से पावन बन रहे हैं, अतः उनके लिए यह युग कली के अंत और सतयुग के अभ्युदय का संधिकाल माने संगम युग है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि काम, क्रोध आदि विकारों में से किसी भी विकार से युक्त अथवा देह अभिमान पर आधारित कर्म ही विकर्म है, जिसका फल दुख, अशांति और तनाव होता है। मनुष्य की आज जो ऐसी तमोप्रधान, पतित एवं विकारी स्थिति है, वह कुछ दिनों अथवा वर्षों में ऐसी नहीं हो गई, बल्कि इस स्थिति तक पहुंचने में समाज अथवा व्यक्ति को एक पूरा युग लगा है, एक सहस्त्र वर्ष, मिलेनियम से भी अधिक समय हुआ है। लगभग 1200 वर्ष पहले मनुष्य फिर भी कुछ अच्छा था, उसमें त्याग की भावना थी, तप की इच्छा थी, स्वार्थ को छोड़ने पर कुछ ध्यान था, वह भगवान को मानता था, वह नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए प्रयत्नशील था, वह अर्थ की तुलना में धर्म को अधिक मूल्य देता था। उस युग को द्वापर युग कहा जाता है। उस युग में धर्म और कर्म दो अलग पुरों में बट गए थे। तब भी लोग देह अभिमानी थे, परंतु उनमें महान बनने की इच्छा थी, उनके लिए वे मार्ग ढूंढ रहे थे। अज्ञानता, देह अभिमान तथा विकारों के कारण कर्म तो उनके भी विकर्म ही की संज्ञा के अंतर्गत थे, तथापि उनके कर्म घोर पाप नहीं थे, वे तमोप्रधान न होकर रजोप्रधान थे। समाज की यह स्थिति भी तुरंत ही नहीं आकर कर बनी थी, बल्कि ये भी सैकड़ों वर्ष ही से मानव की पवित्रता की कलाओं को धीरे धीरे कम होने का परिणाम था। इससे पहले का युग त्रेता युग था, तब सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, पवित्रता समाज और व्यक्ति में प्रतिष्ठित थी। उस युग को त्रेता युग कहा जाएगा। वह आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व था, 2500 वर्ष पहले। तब धर्म और कर्म या गृहस्थ और आश्रम अलग नहीं थे, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद इत्यादि नहीं थे, बल्कि लोगों का आचरण तथा व्यवहार व्यापार भी दिव्यता युक्त था। उससे 1200 वर्ष पहले सभ्यता अपने परम उत्कृष्ट पर थी। लोग धन धान्य संपन्न थे, परंतु किसी वस्तु में उन्हें आसक्ति नहीं थी। वे देह अभिमानी नहीं थे, बल्कि देही निश्चय बुद्धि थे। उनमें विकार नाम मात्र भी नहीं थे। वे सर्व दिव्य गुणों से संपन्न थे, अतः उन्हें देवी देवता की संज्ञा दी जाती है, देवी देवता। तब प्रकृति भी अपनी पूर्ण शुद्ध एवं सत्व प्रधान अवस्था में थी। प्रश्न उठता है कि मनुष्यों को कर्मों की यह श्रेष्ठता कब और कैसे प्राप्त हुई और फिर पतन कैसे शुरू हुआ। इस उत्थान और पतन के इतिहास में कर्म का क्या स्थान है, इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संधिकाल में जब शिव बाबा ज्ञान योग दिव्य गुणों की धारणा तथा सेवा की शिक्षा देते हैं, तब उनके अनुसार आचरण करने वाले आत्मनिष्ठ एवं पवित्र लोगों के कर्म तो सत्कर्म, महान कर्म, अलौकिक कर्म अथवा एक प्रकार से दिव्य कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही वे स्व पुरुषार्थ स्थिति तथा निर्विकारिता की स्टेज के आधार पर भविष्य में सतयुगी या त्रेता युगी सृष्टि में पवित्रता, सुख तथा शांति रूपी प्रलब्ध प्राप्त करती है। अतः सतयुग और त्रेता युग के कर्म शुभ भोग्य कर्म अर्थात पूर्व काल में हुए कर्मों का फल भोगने रूपी ही कर्म होते हैं। इस प्रकार उनके कर्म ही अकर्म है, क्योंकि वे विकर्म भी नहीं करते और संगम युग के पुरुषार्थियों की भांति सत्कर्म भी नहीं करते। उनके ये कर्म पूर्व काल में ज्ञान तथा योग द्वारा ही बने होते हैं। इसी प्रकार त्रेता युग में भी ऐसे ही कर्म होते हैं, परंतु धीरे धीरे जब मनुष्य देहाभिमानी बन जाता है, तब उसके कर्म द्वापर युग में और उसके पश्चात कलयुग में विकर्म बन जाते हैं। परंतु ये कैसी विडंबना है कि लोग यही मानते चले आए हैं कि हरेक युग में सतो, रजो और तमो कर्मों वाले लोग होते हैं और कि कलयुग में भी सतोगुणी अथवा सत्कर्मों वाले लोग होते हैं। वास्तव में यह मान्यता गलत है। कलयुग में सभी तमोगुणी होते हैं, यद्यपि उनमें तमोगुण की मात्रा का अंतर होता है। कर्म अकर्म तथा विकर्म की इस गति को जानकर अब हमें इस कलयुग में श्रेष्ठ कर्म अथवा सत्कर्म करने चाहिए और भविष्य के लिए सत्योगी पावन सृष्टि में संपूर्ण सुख शांति की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें यह मालूम होना चाहिए कि वर्तमान युग संगम युग है। अब परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कर्म गति का वास्तविक ज्ञान दिया है, उस ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग के आधार पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, पिछले विकर्म को भी दगत कर सकते हैं, भावी दो युगों के लिए उच्च प्रलब्ध बना सकते हैं और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि काहे न कर्म करें। सभी आध्यात्मवादी लोग परमात्मा को शांति का सागर मानते हैं। अब यदि शांति स्वरूप परमात्मा की संतान होने पर भी हमारे मन में अशांति तथा मानसिक तनाव इत्यादि पैदा होते हैं तो स्पष्ट है कि हमारे कर्म करने की विधि में कोई न कोई भूल है, क्योंकि यह एक सर्वमान्य नियम है कि विधि ठीक न होने से सिद्धि नहीं होती अथवा युक्ति न होने से ही दुख से भी मुक्ति नहीं मिलती। अतः मानसिक बोझ माने स्ट्रेस, थकान या तनाव यानी टेंशन से छुटकारा पाने के लिए भी कर्म के विधि विधान का ठीक रीति से जानना जरूरी है। परमपिता परमात्मा शिव ने मानव मात्र के कल्याण अर्थ कर्म करने के लिए 16 ऐसे विधि विधान बनाए हैं कि जिनको व्यवहार में लाने से मनुष्य का जीवन शांतिमय अथवा तनाव रहित रह सकता है। वे 16 विधि विधान ऐसे हैं कि उनका पालन करने से मनुष्य 16 कला संपूर्ण बन सकता है। वह पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक ज्योतिर्मान होकर कर शीतलतामयी चांदनी बिखेरता हुआ दूसरों को भी शांति और रस प्रदान कर सकता है। वे युक्तियां आगे हम आपको बता रहे हैं। पहली युक्ति, देही निश्चय में स्थित होकर कर कर्म करो। मानसिक तनाव पैदा होने का एक कारण यह है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ अपने वास्तविक संबंध को नहीं जानता। संबंध न जानने के कारण एक तो उसमें स्नेह पैदा नहीं होता और दूसरे वह अपने कर्तव्यों को भी नहीं पहचानता। स्नेह न होने के कारण अथवा कर्तव्य बोध न होने के कारण मनुष्यों में क्रोध, द्वेष इत्यादि उत्पन्न होते हैं जो ही वास्तव में तनाव के निमित्त बनते हैं। इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना अच्छा होगा। किशनचंद नाम वाला एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रेलगाड़ी में दिल्ली से सोजत रोड स्टेशन जा रहे थे। उसके पिता एक छोटे से जमींदार थे और अलवर में रहते थे। उन्होंने पहले से ही अपने पिताजी को लिख दिया था कि वह फला दिन फला फला गाड़ी में दिल्ली से रवाना होंगे और कि वे भी उसी गाड़ी में उनके साथ में चलें। उनके पिता विशनचंद ने लिख दिया था कि वे चलेंगे। किशनचंद जी ने उनकी शादी अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी घूंघट किया करती थी। उन्होंने अपने ससुर विशनचंद जी को अच्छी रीति से देखा नहीं था, इसीलिए वे उन्हें पूरी तरह से पहचानती भी नहीं थी। विशनचंद जी भी अपनी बहू को नहीं पहचानते थे। जब गाड़ी अलवर स्टेशन पर पहुंची तो किशनचंद जी उतरकर विशनचंद जी को यानी अपने पिताजी को ढूंढने के लिए गार्ड के डब्बे की दिशा में आगे ढूंढते हुए निकल गए। परंतु विशनचंद जी इंजन की तरफ से किशनचंद जी को देखते हुए आ रहे थे। इतने में गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी और इंजन ने भी सीटी बजा दी। विशनचंद जी जिस डिब्बे के सामने पहुंचे थे उसी में बैठने के लिए उन्होंने कोशिश की, दरवाजे के पास बैठी झांक रही एक युवती से उन्होंने आवेदन किया कि वह उसे अंदर आने दे, परंतु वह युवती कड़क कर 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 बोली, अरे बुड्ढे तुम्हें दिखता नहीं, यहां भला कोई जगह रखी है, कहां मेरे सिर पर बैठोगे क्या, क्या तेरी अकल काम नहीं करती है, अकल है या नहीं। बुड्ढे वृद्ध विशनचंद जी ने कहा, अरे गाड़ी चलने का समय हो गया है, खड़ा होने की जगह तो दे दो, यह औरत तो कोई जिद्दी और बदजबान मालूम होती है, फला फला इस टाइप से और भी कुछ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को न जानने और पहचानने के कारण और संबंध को न जानने के कारण तनाव के वशीभूत होकर कर अनाप शनाप बोल ही रहे थे कि गाड़ी की सीटी को सुनकर किशनचंद दौड़ते हुए वापस अपने डिब्बे की और दरवाजे के ऊपर आ पहुंचे। देखते क्या है, पिताजी और बहू में तनाव से बहुत जोरदार बातचीत हो रही है। किशनचंद जी बोल दिए, अरे पगली तुझे पता नहीं यही तो तेरे ससुर है। यह सुनते ही उनकी पत्नी एकदम चुप हो गई और उसने घूंघट कर लिया। उसके ससुर भी, वाह भाई, ऐसा कहकर कर और कुछ नहीं बोले। बाप और बेटा दोनों ही गाड़ी में चढ़ गए और उस युवती ने उन दोनों को अदब से बैठने की जगह दे दी। भला सोचिए तो सही कि इतना अंतर कैसे पड़ गया। संबंध को न जानने से ही तो कर्तव्य का बोध हुआ, संबंध का पता चलने से ही उनको क्रोध आना बंद हो गया। परंतु उन दोनों में तो दैहिक नाता था, इसीलिए उन्हें एहसास हुआ। संसार में अन्य सभी तो ऐसा दैहिक नाता अन्य सभी का ऐसा दैहिक नाता तो होता नहीं, तब भला उनके लिए संबंध बोध इसका क्या अर्थ है और उनमें परस्पर स्नेह कैसे पैदा हो। इसका उत्तर यह है कि वास्तव में तो हम एक परम पिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, अतः हम सभी आपस में भाई भाई हैं। यह तो अमिट नाता है, इस संबंध के कारण तो हम सभी का आपस में बहुत स्नेह होना चाहिए और हम सभी की एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। यदि हम इस बात को स्मृति में रखते हुए व्यवहार करेंगे तो निश्चय ही तनाव पैदा नहीं होगा। तनाव तो तन में आने से पैदा होता है। जब हम आत्मा स्वरूप में स्वधर्म और स्वधाम की स्मृति में स्थित होंगे और हमें शांति ही होंगी, क्योंकि आत्मा स्वयं तो शांत स्वरूप है, शांति ही उसका स्वधर्म है और उसके धाम में भी शांति ही है। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि यदि इस धारणा पर हमारा अटेंशन होगा तो हमें टेंशन नहीं होगी। इस प्रकार यदि स्वस्थिति में टिक कर हम हर एक परिस्थिति माने परिस्थिति का सामना करेंगे तो हर समस्या का शांति से समाधान हो जाएगा। दूसरी युक्ति है निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि जब मनुष्य स्वस्थिति में अर्थात निराकारी आत्मा की स्थिति में नहीं टिका होता तब उसमें कोई न कोई विकार पैदा हो ही जाता है, या तो उसकी दृष्टि वृत्ति ऐसी हो जाती है उसमें काम विकार उत्पन्न हो जाता है कि जिसे भोगने से मनुष्य में आत्मिक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आती है और कमजोर व्यक्ति में तो शीघ्र ही क्रोध तथा तनाव पैदा हुआ ही करता है। या कामी मनुष्य की वासना पूर्ति में बाधा पड़ने पर भी उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, उससे भी उसे तनाव आता है। इसी प्रकार देह दृष्टि द्वारा ही माता पुत्र, पति पत्नी इत्यादि में मोह पैदा तथा स्थिर होता है और उस मोह के कारण मनुष्य में अपने और पराये का भाव, फिर अपनों के लिए पक्षपात, अन्याय करके भी उनका काम पहले करना, उनके लिए धन इकट्ठा करने के प्रयत्नों में दूसरे के हित की परवाह न करना, उनको अपना मानकर स्वयं को पुत्रों, पोत्रों, नाती नातों वाला मानकर अभिमानी, अभिमान करना इत्यादि भाव मनुष्य में जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य निराकारी स्थिति में न रहने से निर्विकारी स्थिति में भी नहीं रहता और उसमें स्थित न होने से निरअहंकारी भी नहीं होता और इस सभी का परिणाम तनाव तथा कलह कलेश ही होता है। अतः विश्रांति, स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में रहने से या स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में रहने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह आत्मिक स्थिति अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित होकर कर कर्म करे। तीसरी युक्ति है कर्म इंद्रियों का राजा बनकर कर कर्म करो। परमपिता परमात्मा शिव ने यह भी समझाया है कि जो मनुष्य कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाता है वह भी सुख की नींद नहीं सोता। जैसे शराबी शराब के बिना, अफीमची अफीम के बिना, धूम्रपान वाला सिगरेट बीड़ी के बिना परेशान हो जाता है, ऐसे ही इंद्रियों के वशीभूत हुआ मनुष्य भी संयम में नहीं रहता। उसका मन और तन दोनों ही मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। वे दूसरों के अधिकारों पर भी आक्रमण कर बैठते हैं तथा सीमा का अतिक्रमण कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति में शब्द संयम नहीं होगा वह वाक विलास के अधीन होकर हंसी मजाक, अनाप शनाप, अनियंत्रित रीति से ही बोलता रहेगा। किसी से दिल लगी की बात करेगा तो अन्य किसी की आलोचना, एक की निंदा कर बैठेगा तो दूसरे का अपमान। वह स्वादेंद्रिय या स्वार्थ के वश होकर कर किसी से ईर्ष्या कर बैठेगा या तो बुरी दृष्टि के वश होकर कर कोई उल्टा काम। इस प्रकार वह अपने लिए कोई ना कोई उलझन, समस्या या मामला पैदा कर लेगा जिससे कि परेशानी और तनाव हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कमल मुख और कमल हस्त बने अर्थात किसी भी कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर कर विकारों के दलदल में न फंस जाए, क्योंकि विकार ही टकराव और तनाव का कारण बनते हैं। परंतु याद रहे कि कर्मेंद्रियों पर शासन करने अर्थात उनका राजा बनने के लिए मनुष्य को तन का राजा बनना होता है और मन का राजा बनने के लिए राजयोग रूप अनुशासन का अभ्यास करना पड़ता है। राजयोग के लिए आत्मिक स्मृति का तिलक लगाना पड़ता है, नियमों रूपी सिंहासन पर बैठना पड़ता है। ऐसे करने पर प्रकृति अपने सभी सुखों साधनों सहित मनुष्य की दासी हो जाती है। तब तनाव तो धरातल में धस जाता है और कहीं भी नजर नहीं आता। चौथी युक्ति है इच्छा मात्रम अविद्या। यदि गहराई से देखा जाए तो मनुष्य की निरअंकुश इच्छाएं ही
उसे परेशान करती है। किसी ने सच ही कहा है, यदि इच्छाएं घोड़ों रूप में होती तो केवल मूर्ख लोग ही उन पर बैठते। चूंकि इच्छाएं रुकती नहीं, काबू में भी नहीं आती, लगाम ही तोड़ देती है, तो आप सोचिए कि ऐसे सरपट एवं बेलगाम घोड़ों पर तो केवल वही बैठेगा जिसने अपना सर तोड़वाना हो। इच्छाओं को जितना भोगो उतना ही इच्छाएं और बढ़ती है। तभी तो कहावत है, आप भया बूढ़ा तृष्णा भई जवान। राजा भरत हरि ने भी कहा है कि तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्णा, अर्थात तृष्णा कमजोर नहीं होती बल्कि उसको भोगते भोगते हमारे दांत कान नेत्र तथा अन्य सभी इंद्रियां जीर्ण शीर्ण तथा कमजोर हो जाते हैं। अतः अपने आप को तृष्णा व इच्छाओं के हवाले कर देना बिना ब्रेक वाली चलती हुई मोटर गाड़ी में बैठ जाना है, उसकी तो अवश्य ही किसी से टक्कर होगी। तब क्या हादसा नहीं होगा? तब क्या तनाव या अशांति से हम बच जाएंगे? मनुष्य की इच्छाएं तो इतनी होती है जितने की आसमान में तारे अथवा रेगिस्तान में रेत के कण। यों इच्छाओं को लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना, इन तीन शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। परंतु इनमें हरेक के अगण्य प्रकारांतर है। उन सभी को पूर्ण करने की कोशिश करना अविद्या की बात करना है। जो सुख संतोष में है वह और किसी में नहीं। त्याग ही मनुष्य के भाग्य का निर्माता है। भोग तो स्वयं मनुष्य को भी भोग लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि ऐसी अवस्था बनाए कि इच्छा ही उसके लिए अविद्या हो जाए। निस्संदेह जब तक मनुष्य इस जान यानी कि शरीर और जहान में है तब तक उसमें इच्छा भी बनी रहती है। परंतु योगी और भोगी की इच्छाओं में दिन रात का अंतर होता है। जबकि भोगी की इच्छाएं सैकड़ों हजारों होती है और वह भी स्थूल सांसारिक विषयों ही के पीछे पगला हुआ भागता रहता है। योगी सादगी का जीवन व्यतीत करते हुए सदाचार को अपनाकर अपने मन में केवल यही इच्छा रखता है कि लोगों की अधिकाधिक सेवा करूं और दिव्य बनूं तथा पवित्र बनूं। ऐसे व्यक्ति का न किसी से टकराव है न ही किसी से ईर्ष्या। कर्म विधि, मनुष्य अपने ही कर्मों से सुख पाता है, अपने ही कर्मों से दुख। वह अपनी ही कृति से विश्रांति पाता है और अपनी ही कृति से तनाव से पीड़ित होता है। इसीलिए कहा गया है कि यह संसार कर्म प्रधान है, यह एक कर्म क्षेत्र है। यहां जैसा कोई बोता है वैसे ही काटता भी है। यहां जिस किसी ने भी कर्म इंद्रियों का आधार लिया है उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और न सही तो शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। अतः प्रश्न उठता है कि मनुष्य अपने जीवन में किन किन मुख्य बातों को सामने रखते हुए रखे जिससे कि उसके पिछले कर्मों का रहा हुआ हिसाब किताब भी चुक्त हो जाए, पिछले कर्मों के द्वारा बने हुए अपवित्र संस्कार भी मिट जाए, ताकि वर्तमान काल में भी उस द्वारा ऐसे कर्म न हो जाए कि तनाव तथा दुख पैदा करने के वे निमित्त बने। मनुष्य के कर्मों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए परम पिता परमात्मा शिव ने जो अनमोल कर्म विधियां समझाई है उनमें से जो चार मुख्य मालूम होती है उनका हम यहां उल्लेख करेंगे। पहले तो योग युक्त होकर कर्म करना परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि योग युक्त होकर कर कर्म करो। योगस्थ करु कर्माणी, गीता में भी ऐसे ही कहा गया है। परम पिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर कर कर्म करने वाला ही स्थित प्रज्ञ अर्थात अटल निश्चय तथा स्थित कृति वाला कहलाता है। उसमें ही दिव्य बुद्धि जो कि कर्तव्य की पारखी होती है का उदय होता है। योग में स्थित हुआ मनुष्य ही सभी सांसारिक रसों के आकर्षणों से ऊपर उठकर कर प्रभु ही के प्रेम रस आत्मरस तथा कर्मातीत स्थिति के परम रस में लवलीन रहता है। इसीलिए वह कर्मों को उपराम अनासक्त अथवा अलिप्त होकर कर करता है। ईश्वरीय स्मृति रूपी योग के कारण वह कर्म योगी कहलाता है। उसका हाथ भले ही कार्य में होता है तो भी उसका चित्त भगवान में होता है, अतः उसे न स्थितियां प्रभावित कर सकती है न ही पदार्थ लुभायमान करके उसके नैतिक पथ से उसको फिसला सकते हैं। ऐसी स्थिति होने से वह एक मधुर अलौकिक रसयुक्त स्थिति में समाया हुआ रहता है जिससे वह नीचे नहीं उतरना चाहता। इस स्थिति में टिके होने के कारण न उसकी किसी से खटपट होती है, न अनबन, न वह किसी परिस्थिति से खींचता है, न ही उस पर उत्तेजना का वार होता है। वह तो योग अवस्था रूपी एयर कंडीशन कोच माने वातानुकूलित डब्बे में विश्रांति एवं शीतलता में होता है। आगे के लिए भी उसके संस्कार सात्विक एवं दैवी बनते हैं। कलह कलेश करने का अब उसका स्वभाव ही नहीं रहता। अब वह ऐसा तपस्या मूर्त बन जाता है कि दूसरों का भी दुख हर लेने वाला तथा अपनी स्थिति से उनमें खुशी भर देने वाला होता है। दूसरी विधि है अष्ट शक्तियों को धारण करके कर्म करना। मनुष्य की मनोस्थिति तभी बिगड़ती है जब आठ में से किसी न किसी एक शक्ति का पूरा या ठीक प्रयोग नहीं करता। उन आठ शक्तियों में से एक है निर्णय की शक्ति। मनुष्य सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, ईश्वरीय आसुरी, धर्म अधर्म, मर्यादा अमर्यादा या लाभ कर या एवं हानिकर में जब स्पष्ट रूप से भेद का निर्णय नहीं कर पाता तो वह गलत कदम उठा लेता है अथवा निश्चय पूर्वक तथा आत्मविश्वास यानी फेथ एंड कॉन्फिडेंस से कर्म नहीं कर सकता बल्कि अस्थिर मन से कार्य करता है। इससे उसे थकान अधिक होती है और सफलता कम मिलती है। इस हलचल की अवस्था में वह मन की एकांतता और शांति खो बैठता है। दूसरी है सहन शक्ति। जब मनुष्य को कोई व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जो अपमान सूचक, निंदा परक या स्नेह की कमी की सूचक हो तो भी उसके मन में उत्तेजना पैदा होती है। सहन शक्ति की कमी भी मनुष्य को दूसरों के प्रति भड़का, उकसा या चमका देती है और बात बढ़ा देती है। इस शक्ति के बिना मनुष्य का जीवन दुखी हो जाता है। तीसरी, अगर मनुष्य में सामना करने की शक्ति न हो तब भी वह छोटी छोटी समस्याएं आने पर ही घबरा जाता है। वह हल्की सी बात में भी भारी मान लेता है। कोई शरीर छोड़ दे तो रो रो कर बेहाल हो जाता है। चौथी है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में गंभीरता नहीं है, दूसरों की बातों को अपने मन में समाने का सामर्थ्य नहीं है तथा उनकी कमियों को देखकर स्वयं विशालता और मर्यादा में रहने की शक्ति नहीं है तो भी उसके विचारों में उछाल आने से झगड़ा पैदा होता है। पांचवी, इसी प्रकार फरकने की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य यह नहीं परख सकता कि अमुक मनुष्य अच्छा है या बुरा, उससे संग या संबंध रखने चाहिए या नहीं, तो वह धोखा खा बैठेगा या धोखा खा बैठता है। या कुसंग में फंस जाता है, या यूं कहिए कि कोई झंझट मोल ले बैठता है, यह भी उसके लिए दुख ही का कारण बन जाता है। छठवीं, फिर यदि मनुष्य में समेटने की शक्ति न हो तो वह इतना विस्तार कर बैठता है कि स्वयं ही उससे तंग आ जाता है। कई मनुष्य बात करना शुरू करते हैं तो वे बोलते ही चले जाते हैं, उन्हें वार्ता को समेटना नहीं आता। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें यह शक्ति नहीं है कि वे अपने संकल्पों को रोक सके। परिणाम यह होता है कि उन्हें नींद भी नहीं आती। गोलियां या पिल्स खाकर कर वह सोते हैं, तभी भी वे ताजगी का अनुभव नहीं करते। सातवीं, इसी प्रकार जीवन में स्नेह और साथ देना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी को सहयोग यानी कॉपरेशन नहीं देता तो दूसरे लोग उसके साथी नहीं बनते, वे भी उसे सहयोग नहीं देते, वे उससे सहानुभूति नहीं रखते। अतः सहयोग की शक्ति न होने से भी परस्पर मन मुटाव और शिकायत ही होता है। सहयोग देने से ही दूसरे मनुष्यों में हमें सहयोग मिलता है और उनसे हमारा संबंध भी अच्छा होता है। आठवां है, इनके अलावा शरीर से और कर्म से स्वयं को अलग करने की सामर्थ्य भी जरूरी है। जैसे कछुआ कर्म करने के बाद अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही मनुष्यों को भी यह अभ्यास होना चाहिए कि वह कर्म से हटना चाहे हट सके, वह शरीर को ढीला छोड़ सके और मन को भी किसी समय सभी कर्मों से अलग कर सके, तभी उनका मन पूर्ण निश्चिंत अनुभव कर सकेगा। संसार में तनाव का एक मुख्य कारण यह भी है कि मनुष्य कभी भी मन को अपनी देह से तथा कर्म से पूर्णतः अलग माने विड्रॉल नहीं कर सकता। इस प्रकार उसके मन में पूर्णतः आराम का अनुभव न होने के कारण वह शीघ्र तनाव में आ जाता है। अब ऊपर अभी अभी इस चर्चा में हमने जो आठ अष्ट शक्तियां बताई है, इन आठ शक्तियों के आधार पर न केवल मनुष्य संसार में सफलता प्राप्त कर सकता है बल्कि उसका जीवन शांति से व्यतीत होता है तथा आगे के लिए भी वह अपने साथ अच्छे संस्कार ले जाता है। तीसरी विधि है, संतुलन और आनंद में स्थिर होकर कर कर्म करें। परमात्मा शिव ने बताया है कि जैसे रचयिता हो वैसे ही रचना होती है। अतः कर्म में प्रवृत्त होने से पहले मनुष्य को अपनी अवस्था देख लेनी चाहिए, उसे जांच यानी चेकिंग कर लेनी चाहिए कि मेरी स्थिति में हर्ष और उल्लास और आनंद है या नहीं। जैसे हवाई जहाज को उड़ाने से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है ताकि हादसा न हो जाए, रेलगाड़ी के चलाने से पहले भी उसकी पड़ताल होती है। हर डब्बे के नीचे भी एक मिस्त्री आकर कर हर पहिए को हथौड़े से बजाकर देखता है कि उसके टूटे हुए होने की आवाज तो नहीं आती। इसी प्रकार हमें भी तो पहले यह देख लेना चाहिए कि शरीर रूपी गाड़ी चलाने से पहले हमारी स्थिति ठीक है। हवाई जहाज के चालकों यानी ड्राइवर्स का भी स्वास्थ्य देखा जाता है, उनकी डॉक्टरी परीक्षा होती है, उन्होंने शराब तो नहीं पी रखी, ऐसी बातें देखी जाती है। इसी प्रकार यदि यह न देखा जाए कि मनुष्य का ज्ञान चक्षु ठीक काम करता है, उसका मन काम मोह इत्यादि के नशे में तो नहीं है, अन्य किसी मनुष्य के साथ उसका स्वभाव टकराने से दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि संतुलन माने बैलेंस तथा आनंद माने ब्लिस की स्थिति में हो, इसमें स्थित होकर कर कर्म करने से स्वयं को तनाव होने की बात तो छोड़ दीजिए, दूसरों को भी शांति मिलेगी। परंतु यह स्थिति भी तब बनी रह सकती है जब हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जानते हुए वर्तमान संगम युग में अपने इस कर्तव्य को जानें कि हमें दूसरों को भी आनंद का महादान देना है। चौथी विधि है, प्रेम और नियम दोनों का पालन। मनुष्य के कर्म में त्रुटि होने का एक कारण यह भी हुआ करता है कि किसी के प्रति वह प्रेम में एकदम लुढ़क जाता है। किसी अन्य के साथ प्रेम या स्नेह माने लव की बात छोड़कर नियम ही पर अड़ जाता है। अतः कहीं तो वह कहता है, प्रेम में नेम नहीं, लव नोज नो लॉ। इस उक्ति का अक्षरांश व्यवहार करता है और कहीं कहता है कि नियम के बिना भी कोई जिंदगी है, मैं नियम को किसी भी हालत में ढीला नहीं करूंगा। वह स्वभाव से इतना कड़ा हो जाता है कि उसमें कोमलता ही नहीं रहती। इन दोनों का परिणाम ठीक नहीं निकलता। नियम तोड़कर ईश्वरीय ज्ञान अथवा मर्यादाओं का जो उल्लंघन किया जाता है वह भी दुखांतिक होता है, और प्रेम को छोड़कर न्याय या नियम की जो रट लगाई जाती है उसके परिणाम स्वरूप भी मनुष्य शत्रु बन जाते हैं। ये दोनों ही परिणाम अशांति तथा तनाव पैदा करने वाले होते हैं। अतः कर्म करते समय हमें दोनों पहलुओं को ठीक रखना चाहिए। जीवन में संतुलन के बिना खराबी ही होती है। इसीलिए किसी ने ठीक कहा है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगली विधि है भूल की सुकृति या कर्म का सुधार। परमपिता परमात्मा शिव ने यह भी समझाया है कि यदि कोई भूल हो जाए तो उसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। इससे मनुष्य के मन पर बोझ नहीं रहता, उसकी अंतरात्मा उसे सताती नहीं, और लोग भी उसके प्रति दयालु और क्षमा भाव बन जाते हैं। वे उसे सच्चा और सज्जन मानते हैं। इससे उसके मन में तनाव भी पैदा नहीं होता, यदि हो भी तो शीघ्र ही मिट जाता है। पुनश्च भूल को सच्चे मन से स्वीकार कर लेने से भूल भी हल्की हो जाती है। उस एक भूल के कारण अनेक झूठ नहीं बोलने पड़ते और इसीलिए भूल आगे नहीं बढ़ती। फिर आगे के लिए भूल को मिटाने की प्रतिज्ञा करना ताकि उस भूल की पुनरावृत्ति न हो, यही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। इस युक्ति को अपनाने से आगे के लिए मनुष्य का अलबेलापन घट जाता है और कर्म सत्कर्म होने लगते हैं, और इसीलिए खुशी होती है कि मैं अच्छा बन रहा हूं। तब भला तनाव की बात ही कहां रही। अंत में यह कहना भी जरूरी है कि मनुष्य को पूर्ण शांति तभी मिलती है जब उसके पूर्व जन्मों के विकर्म भी दगद हो। पूर्व जन्मों के विकर्म योगाभ्यास के बिना तथा अभी बताई गई उपरोक्त युक्तियों का प्रयोग किए बिना नहीं मिट सकते। अतः मनुष्य को चाहिए कि योग युक्त बने ताकि इस जन्म में भी आनंद प्राप्त करे तथा भविष्य में भी पूर्ण शांति प्राप्त करे। कर्म विधान और उसका ज्ञान। मनुष्य स्वभाव से अल्पज्ञ है, जन्म मरण में आने वाला है और स्वयं कर्म के अधीन है। अतः वह कर्म की गहन गति को तथा सत्य अपने द्वारा की गई खोज से नहीं जान सकता। वह कर्म गति को ठीक ठाक जानता होता तो अब भव बंधन, देह बंधन तथा कर्म बंधन में जकड़ा हुआ न होता। कर्म बंधन से छूटने का सत्य ज्ञान कर्मातीत परमपिता परमात्मा ही देते हैं। इसीलिए ही उन्हें दयालु, कृपालु या करुणा का सागर कहा गया है। जो स्वयं मुक्त है वही तो दूसरों को भी छुड़ा सकता है। परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में तभी अवतरित होते हैं जब सभी मनुष्य आत्माएं दुख और अशांति के पाशों में जकड़ी हुई होती है। तब वे कर्म का ज्ञान देकर पाशों में बंधी हुई उन विकारी आत्माओं को पाशों से निकालने के लिए विधि विधान बताते हैं। इसीलिए ही शिव को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर कर्म बंधन से मुक्त होने की जो 16 मुख्य युक्तियां बताई है उनमें से 4 का यहां हम लोग संक्षिप्त उल्लेख करेंगे। पहला, न्यासी अथवा ट्रस्टी बनकर कर कर्म करो। परमपिता परमात्मा शिव दुख और अशांति से छूटने के लिए कर्मों का संन्यास करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि वे कहते हैं कि कर्मों को मेरे अर्पण करो। उनका यह महाउपदेश है कि सन्यासी नहीं, न्यासी माने कि ट्रस्टी बनो, अर्थात स्वयं को निमित्त अथवा ट्रस्टी मानकर शिव बाबा की आज्ञा से तथा उन्हें ही मालिक समझकर कार्य करो। इस प्रकार अर्पण बुद्धि होकर कर कर्म करने से मनुष्य का मन हल्का होता है, वह स्वयं को ईश्वरीय कार्य के लिए एक साधन माने कि इंस्ट्रूमेंट मात्र ही मानता है, इसीलिए वह अपने तन मन या धन को आसुरी कार्य के लिए प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वह परमात्मा ही के निर्देश या मालिक परमात्मा ही के निर्देशक या मालिक मानता है, इसीलिए वह आलोचना की चिंता न करके केवल प्रभु पसंद कार्य करने के लिए ही सतत प्रयत्नशील रहता है। स्वयं को प्रभु ही का मानने के कारण वह निश्चिंत रहता है और हरेक परिस्थिति में अपना कल्याण ही समझता है, न तो लाभ होने पर उसे अभिमान आता है, न ही हानि होने से वह दुख अनुभव करता है। वह कर्म को मान और शान का साधन जानकर नहीं बल्कि उसे ईश्वरीय आज्ञा का पालन रूप कर्तव्य जानकर करता है। उसे कोई चाह तृष्णा या अपनी इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह तो केवल निमित्त माने ट्रस्टी ही है। उससे वह निष्काम बुद्धि होकर कर कर्म करता है, अर्थात इस कलयुग कलयुगी मृत्यु प्राय संसार से लगाव रहित होकर कर ही वह कर्म करता है, इसमें मेरेपन का भाव ही नहीं रहता। इस युक्ति के अनुसार आचार करने से वह मोह अहंकार तथा आलस्य से छूट जाता है। ऐसी अवस्था में उसके मन में तनाव पैदा होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जो दूसरी युक्ति है वो है लोक कल्याण अर्थ कर्म। परमपिता परमात्मा शिव ने यह भी समझाया है कि कोई भी कार्य करो तो यह देखो कि उससे लोगों का कल्याण होगा या अकल्याण। सदा यह याद रखो कि हमारी दृष्टि वृत्ति या कृति इन तीनों में से किसी के द्वारा भी किसी का भी अकल्याण न हो, यहां तक कि किसी के अकल्याण का संकल्प भी न करो। हमारे परमपिता विश्व कल्याणकारी है, तभी तो उनका नाम शिव है। हमारे कल्याणकारी कार्य का यह युग भी कल्याणकारी है, तभी तो इसे पुरुषोत्तम युग कहा गया है। अतः दुख हर्ता एवं सुख कर्ता परमात्मा की संतान होने से हमें यह तसल्ली होगी, किसी का भी बुरा नहीं किया है, ना ही किसी का बुरा सोचा है। भक्त लोग भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं सर्वेन भवन्ति सुखिना, अर्थात हे प्रभु सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और लेश मात्र भी दुख न हो। परमपिता परमात्मा शिव ने भी कहा है कि न किसी को दुख दो और न किसी से दुख लो, क्योंकि दुख देने वाला स्वयं भी दुखी होकर कर मरता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने चेहरे से, अपने वचनों से तथा अपने हाथों से सभी रूहों को राहत दें, सभी को खुशी का खजाना बांटें, सभी को सुख की राहें दिखाएं, किसी को कभी भी हम सताएं नहीं ताकि किसी का भी हमें श्राप न मिले, कोई भी हमारे कर्मों के कारण आह न भरे। हम ऐसे वचन बोलें कि सुनने वाले समझे कि हमारे मुख से लाल अथवा रतन निकल रहे हैं अथवा फूल झड़ रहे हैं। हम न तो पर चिंतन करके अपना पतन अथवा अकल्याण करें, न ही इधर उधर की बात कर मंथरा जैसे धंधा करके लोगों के घर बर्बाद करें। जब हमारी भावना, हमारी कृति और हमारी स्थिति शिव संकल्प वाली अर्थात कल्याणकारी होंगी तो निश्चय ही हमारे में तनाव, उत्तेजना, अशांति इत्यादि का उद्रेक होगा ही नहीं। जब हमारे कर्मों के पीछे सेवा भाव ही निहित होगा तो हमारा किसी के साथ भला मन टुटाओ क्यों होगा। जब हम सभी के शुभ चिंतक अथवा हितोषी ही होंगे तो हमें किसी के प्रति घृणा क्यों होगी। और हमें कोई चिंता ही क्यों होगी। हम तो सभी के आशीर्वाद के पात्र होंगे जिससे हमें शांति ही मिलेंगी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तीसरी विधि है न्यारा और प्यारा होकर कर कर्म कार्य। अब तो परमपिता परमात्मा शिव ने हमें यह भी समझा दिया है कि अब कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम समय है। सभी तत्व तमो प्रधान हो चुके हैं, सभी वस्तुएं निस्सार है, सभी किसी न किसी दुख चिंता रोग या शोक से पीड़ित है, सभी में कोई कई आसुरी गुण है, सभी विकर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। गोया यहां सत्यता का और सच्चे सुख का सार नहीं है, तब भला इसमें मन को क्यों लगाना। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब इससे उपराम होकर कर तथा न्यारे होकर कर कर्म करो। जब अपनी यह देह भी हमने शिव बाबा के अर्पण कर दी है तो बाकी हमारे पास अपना है भी क्या। अब इस देह और दुनिया की स्मृति और आसक्ति को छोड़कर हमें एक शिव बाबा ही से सर्व संबंध जोड़ने चाहिए, उस ही से प्रीति जोड़नी चाहिए इस संसार में, तब भला रखा ही क्या है। यहां तो चार दिन का खेल बाकी है, यहां के तो सभी प्राणी असमर्थ है, अतः मन का मीत परम पिता परमात्मा को बनाकर कर्म करने से निश्चय ही कर्मों में सामर्थ्य भी आएंगी और अन्य आत्माओं से हमारा कर्मों का खाता भी नहीं बनेगा। फिर न्यारे बनने के फलस्वरूप हदों से निकलकर बेहद में आने के परिणाम स्वरूप हम सभी के प्यारे भी होंगे, और जहां निस्वार्थ प्यार हो वहां अनबन कैसी, वहां तो जीवन सुखी ही होता है। अतः हमें यही समझकर कर्म करना चाहिए कि हम तो अब यहां दो दिन के मेहमान हैं, यह माया की दुनिया तो बेगानी दुनिया है, हमारा तो एक शिव बाबा ही है, हम तो परदेसी है। इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी मनुष्य आत्माएं तो परमपिता परमात्मा के वत्स होने के नाते सभी हमारे भाई है, हमारा किसी से वैर विरोध नहीं, हमारी तो देह भी अब अपनी नहीं क्योंकि हम इसे परमात्मा के अर्पण कर चुके हैं, तथा यह भी अपवित्रता से पैदा हुई चीज है। जब देह से ही हमारा ममत्व नहीं तो हमारा अन्य किसी से लगाव होगा। इस प्रकार भाव से कर्म करने वाले अनासक्त योगी को अशांति क्यों होगी। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए चौथी विधि विकर्म करने नहीं है, दगद करने है। परमात्मा शिव ने हमें यह भी बताया है कि मनुष्य आत्मा ने पिछले अनेक जन्मों में देहाभिमानी तथा अज्ञान के कारण बहुत ही विकर्म किए हैं। उन विकर्मों के कारण ही आज मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का दुख या तनाव है। अब प्रश्न उठता है कि उन विकर्मों रूपी कांटों के महावन को कैसे समाप्त किया जाए। यदि उनको भोग करके समाप्त करने लगे तब तो उनका अंत होना ही मुश्किल है, तो शायद उनमें और भी वृद्धि न हो जाए, तब क्या किया जाए। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें यह समझाया है कि इन विकर्मों को योगा अग्नि द्वारा ही दगत किया जा सकता है। अतः यदि हमें अशांति चिंता तनाव दुर्भाग्य इत्यादि से सदा के लिए छुटकारा पाना है तो हमें योगा अग्नि को प्रज्वलित करना होगा, उसमें ही इन विकर्मों को भस्मीभूत करना होगा। पुनश्च योग में स्थित होने से आगे के लिए भी कर्म अकर्म ही बनेंगे, वे विकर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि विकर्म तो विकार युक्त कर्मों का नाम है और विकर्मों की उत्पत्ति देहाभिमान से ही होती है। देह अभिमान देह के भाव में रहने से तथा आत्मा को भूलने से होता है, और इसकी निवृत्ति देह के भाव को मिटाने तथा आत्मिक स्थिति में होने से हो सकती है, और इसी का नाम ही तो योग है। तो निष्कर्ष यह है कि योग के बिना सर्व दुख निवृत्ति तथा सर्व सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। योग के बिना उसकी अशांति के कारण पूर्णतः नहीं मिट सकते। योग के बिना उसे अति इंद्रिय सुख अथवा आनंद का परम लाभ नहीं हो सकता। योग के बिना केवल दो ही अवस्थाएं होती है, भोग या वियोग। ये दोनों ही दुखांत या दुखो उत्पादक है। इनसे शांति की आशा रखना निराशा का आह्वान करना है। इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं, वत्सों योगी बनो, योग युक्त होकर कर कर्म करो, परंतु योग में स्थिति होने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है और नियमों का पालन करना ही पवित्र बनना है। मनुष्य पवित्र एवं योग युक्त बनने का पुरुषार्थ तब ही करता है जब उसके मन में यह दृढ़ संकल्प हो कि मैंने विकर्म नहीं करने हैं बल्कि पिछले विकर्मों को भी दगत करने हैं। इस व्रत वाला शूरवीर व्यक्ति तनाव शनाव के चक्कर में नहीं आता। वह माया और प्रभु दोनों को पहचानता है और माया पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। कर्म करें तो कैसे करें? कुछ लोग पूछते हैं कि यह संसार बना ही क्यों है। हमारा विचार है कि यह प्रश्न वे ही किया करते हैं जिन्हें संसार में किसी न किसी प्रकार का दुख है अथवा हो चुका है। जो लोग स्वास्थ्य यौवन धन धान्य एवं सम्मान संपन्न है उन्हें यह प्रश्न करते हुए प्रायः नहीं सुना गया। वे तो अपने सुख लूटने में ही मस्त हैं, परंतु उन्हें भी यह मालूम होना चाहिए कि अब जिस प्रकार से वे कर्म कर रहे हैं अपने लिए वे तदनुसार ही दुनिया बना रहे हैं। जिन लोगों का यह प्रश्न है कि यह दुनिया क्यों बनाई गई है और ऐसी क्यों बनाई गई है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वे इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि कम से कम उनके संपर्क तथा संबंध में आने वाली जो छोटी सी दुनिया है उतनी तो उन्होंने स्वयं ही अपने कर्मों से बनाई है और आगे के लिए भी वे वर्तमान कर्मों द्वारा अपने सुख या दुख के भोग के लिए अपनी छोटी सी दुनिया रच रहे हैं। हमारे इस कथन का भाव यही है कि हम सभी जो अपने अपने कर्म करते हैं उससे हम में से हर एक अपने लिए ऐसा कर्म खाता बना लेता है कि जिसे भोगने के लिए वह अपने मित्रों संबंधियों शत्रुओं इत्यादियों की छोटी सी दुनिया की नींव रखता है। यह बात ठीक वैसे ही है जैसे कि एक एक प्लाट पर हर एक मालिक अपने हाथों से बीज बोकर कर भविष्य में अपने लिए वृक्ष लगा दे तो कई प्लाट मिलाकर कर एक बहुत बड़ा उपवन बन जाता है। हर एक मनुष्य द्वारा भी कर्मों के रूप में भविष्य के बीज बोए जाने से यह एक बहुत बड़ा उपवन अथवा वन रूपी संसार बन जाता है। इस प्रकार अनादि काल से हम मनुष्य आत्माएं इसमें बोती और फल पाती चली आ रही है। अतः मेरे विचार से प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि यह संसार किसने बनाया और क्यों बनाया। यह संसार तो जैसा है वैसा हम सभी ने तथा हमारे पूर्वजों ने अपने ही कर्मों द्वारा मिलकर कर बनाया है। प्रश्न यह होना चाहिए कि अब हम पहले किए गए कर्मों के फलस्वरूप होने वाले दुखों से छूटें कैसे तथा वर्तमान काल में भी कैसे कर्म करें कि आगे चलकर कर यह भी हमारे लिए दुखोत्पादक न हो जाए। जो लोग आज सुख भोग में लगे हुए हैं और ऐसा प्रश्न नहीं करते उनसे भी हमारा निवेदन है कि जिसे वे सुख माने बैठे हैं वह तो दुखांत सुख है। वह संपूर्ण सर्वकालीन सर्वदेशिक तथा सर्वांगीण नहीं है। फिर उनमें तन और मन का सुख है भी तो भी उनमें एक बहुत बड़ी भारी कमी यह है कि उसमें आत्मा का सुख भी नहीं है जिसमें आत्मा प्रफुल्लित हो जाए। अतः जिसे वे सुख मान रहे हैं वह तो अंग भंग है, क्षण भंगुर है, उपरा उपरी है और काया तथा कार्य काल के अंतर्गत है। अतः उनको हम यह कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों द्वारा वे भी संपूर्ण निरंतर सात्विक एवं सर्वतोमुखी सुख की दुनिया रच सकते हैं, दुख का मूलोच्छेदन कर सकते हैं। नीति और रीति, उनके लिए परमपिता परमात्मा शिव ने हमें कर्म करने की जो नीति और रीति बताई है उसे यदि जानकर हम आचरण में लाएं तो हमारे कर्म हमारे लिए इस जन्म में संतुष्टि और खुशी का साधन बन सकते हैं और हमारे इस जन्म के सार्थक एवं सफल होने का कारण बन सकते हैं। यदि इस नीति और रीति को अथवा प्रणाली और परिणाम को न जानकर कर्म करते रहेंगे तो हमारा परिणाम भी तुक्के शाह अथवा भुलक्कड़ वाला हो जाएगा, जिससे कि हम गलती पर गलती करते चले जाएंगे। अतः हम लोगों के लिए जो कि काले कर्मों की कीचड़ से निकलना चाहते हैं तथा अब पिछले कर्मों की भूल और शूल से छूटना चाहते हैं, कुछ थोड़ी सी कर्म रेखा उनके आगे प्रशस्त करते हैं। पहले तो श्रीमत के अनुसार कर्म। संसार में कई प्रकार के मत है। एक तो मनुष्य का अपना मन जैसा कहता है वैसा ही वह करता है, ऐसी मत को मन मत कहा जाता है। मनुष्य का अपना मन कभी ठीक भी कहता है कभी गलत भी। मनुष्य अपूर्ण है, अतः उसका मन सर्व प्रकार की त्रुटियों से रहित मत तो उसे दे नहीं सकता। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, वह एक संस्कृति विशेष, देश विशेष, परिस्थिति विशेष, जाति विशेष, वातावरण विशेष तथा कुटुंब विशेष की उपज है। अतः उसके विचार इन संकीर्णताओं से थोड़े बहुत अवश्य ही रंगे हुए होते हैं। वे इन हदों में बंधे हुए होते हैं, वे पूर्णतः पक्षपात रहित नहीं होते। हर एक मनुष्य के अपने भी कुछ संस्कार होते हैं, उनकी अपनी भी कमियां, कमजोरियां, विकार और विकृतियां तथा हालात और परिस्थितियां होती है। अतः मन मत मनुष्य को एक ऐसे मार्ग पर चलने में असमर्थ है जो मार्ग उसे सदा काल के लिए दुख से निकाल दे, तनाव, अशांति तथा आदि व्याधि से छुड़ा दे। मन मत के अतिरिक्त दोस्तों, संबंधियों इत्यादि से भी मनुष्य सलाह किया करता है, उनके मत को पर मत कहते हैं, पर मत। दूसरे लोग मनुष्यों की परिस्थितियों का पूरा माप तोल तो कर नहीं सकते, न ही उस मनुष्य की योग्यताओं तथा कमजोरियों को पूरी तरह वे जानते हैं। फिर उनके अपने भी स्वार्थ, संस्कार, हिसाब किताब, मानसिक अवस्थाएं इत्यादि होते हैं। उनके मन मत के अंतर्गत गिनाई गई कमियां या दोष तो होते ही है। अतः पर मत भी मनुष्य को दुखी संसार से निकालकर सर्वकालीन सुख के तट पर पहुंचाने में समर्थ नहीं होती। आखिर मन मत और पर मत दोनों मनुष्य मत ही तो होती है, और उक्ति प्रसिद्ध है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। शास्त्र मत और गुरु मत में भी वे न्यूनताएं पाई गई है जो कि मनुष्य मत में होती है। कहा तो यही जाता है कि अमुक अमुक ग्रंथों में लिखा हुआ ज्ञान परमात्मा द्वारा दिया हुआ है, परंतु यदि सच्चाई की दृष्टि से देखा जाए तो वह भी प्रायः मनुष्य द्वारा ही दिया हुआ है। यद्यपि वे मनुष्य आजकल के तमो प्रधान मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अच्छे थे, मनुष्य कृति होने के कारण ही शास्त्रकर्ताओं के नाम उन उन ग्रंथों के साथ मनु का नाम, रामायण के साथ वाल्मीकि का नाम, दर्शनों के साथ उनके कर्ताओं अथवा संकलनकर्ताओं का नाम, वेदों के साथ भी अग्नि, आदित्य आदि के नाम लिए जाते हैं। अच्छा, यदि मान भी लिया जाए कि कोई शास्त्र, आगाम या निगम परमात्मा द्वारा दिया हुआ परम पवित्र ज्ञान है, तो भी उसे लिया तो किसी न किसी मनुष्य ही ने है। अतः वह उसे जितना और जैसा समझ पाया है उतना तथा वैसा ही उसने लिखा है, गोया उस पर भी उसके विचार, संस्कार, दृष्टिकोण यानी सब्जेक्टिविटी इत्यादि की पूट तो लगी हुई होती है। इस पर भी यदि कहा जाए कि ऐसा भी नहीं है बल्कि फला शास्त्र में तो साक्षात परमात्मा ही के शब्द है, वाक्यांश, वाक्य, कौमा मान अर्धविराम, फुल स्टॉप मान विराम है, तो प्रश्न उठेगा कि उसका अर्थ समझाने वालों ने तो यथा योग्य, यथा संस्कार, यथा भावना ही अर्थ लिया है। तभी तो आज संसार में एक ही शास्त्र के अनेक भाज्य, टीकाएं व वृत्तियां माने ग्लॉसेस, व्याख्याएं इत्यादि उपलब्ध है। और उन उन पर आधारित अनेकों अनेक मत मतांतर है, तब भी अंत तो गत्वा वे है तो मनुष्य मत ही। अभी अभी हमारे ही जीवन काल में स्वयं परमात्मा ने आकर तो वह ज्ञान हमें नहीं दिया। परमात्मा ने तो क्या ज्ञान शिरोमणि ब्रह्मा अथवा सरस्वती ने या आदम एडम और हवा ईव ने भी तो नहीं दिया है, तो हम किसको सत्य माने और आजकल की परिस्थितियों में उनके अनुसार कैसे चलें यह हमें कौन बताएगा? हम कैसे कर्म करें, इस प्रश्न के उत्तर में क्या उत्तर है? ऊपर हमने अनेक प्रकार के मतों की इसीलिए व्याख्या की है कि पहले तो हम यह बातें भली भांति समझ लें कि उनसे हमारा पूर्ण कल्याण होने वाला नहीं है। स्वयं गीता को लीजिए, आद्य शंकराचार्य तो उसे निवृत्ति परक शास्त्र मानते हैं, जबकि लोकमान्य तिलक उसे कर्मयोग शास्त्र मानते हैं। फिर शंकराचार्य निम्बकाचार्य इत्यादि की व्याख्याएं अलग है। तब यदि आप गीता को भगवान के वाक्य भी मान लें तो भी उनका कौन सा अर्थ या दृष्टिकोण कौन सा मानेंगे? उसको वैसा ही मानने के लिए आपके पास सर्वमान्य मापदंड कौन से हैं? अतः इन सभी कारणों से हम कहते हैं हम जन्म जन्मांतर मनुष्य मत पर ही चलते आए हैं। यदि ये शास्त्र या इनकी व्याख्याएं सब ईश्वरीय मत के अनुसार होती तो अब तक हमारा कल्याण हो गया होता और आज संसार की स्थिति भी स्वर्गमय अथवा सुख शांतिमय होती। परंतु हम तो देखते हैं कि रोग शोक इत्यादि संसार में वैसे ही चले आ रहे हैं, बल्कि अधिक ही हुए हैं। इसीलिए अब हमें निश्चयात्मक बुद्धि से इन सभी के बजाय एक परमात्मा ही का सहारा लेने की जरूरत है। परमात्मा ही ज्ञान के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है और पतित पावन तथा दुख हरता और सुख करता है। अतः केवल उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही मनुष्य को पतित से पावन, मनुष्य से देवता अथवा नर से नारायण बनाने वाला और सुख शांति संपन्न बनाने वाला है। हमें उस एक ही के मत पर चलना चाहिए, उसके मत को ही श्रीमत कहा जाता है। तो हमें चाहिए कि हम श्रीमत ही के अनुसार अपने कर्म करें। परमात्मा ही हम में से हरेक के अनेक जन्मों की जन्म पत्री अर्थात कर्मों का खाता जानते हैं। वे ही योग्यताओं तथा कमियों से परिचित हैं। उन द्वारा दिखाया हुआ मार्ग ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। अतः मेरी यह मान्यता है कि उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान मुरलियां हमें सुनाई है उनका हम प्रतिदिन अध्ययन करें। उनके आदेश निर्देश द्वारा खोले गए ज्ञान एवं योग केंद्रों पर हम प्रतिदिन जाएं और मुरलियों की धारणा करें। उनकी ज्ञान मुरलियों में हमारी सभी समस्याओं का हल है। हमारे लिए पूरी कर्म संहिता दी गई है। हमें साक्षात उन्हीं के महावाक्य है उसमें साक्षात उन्हीं के महावाक्य है जो कि हमें कर्तव्य बोध कराते हैं। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा ने भी उन्हीं में लिखे महावाक्यों के अनुसार ही अपना जीवन महान बनाया। उन्हीं को कर्मों के लिए आदर्श मानकर हम भी कर्म करें। कर्म करें तो ऐसा करें, इससे न तो कर्म में गलतियां रहेंगी, न चिंता होंगी, न तनाव। पवित्र प्रवृत्ति कर्म गति के ज्ञाता परमपिता परमात्मा शिव ने हमें अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के अनमोल साधन बताए हैं। हम प्रतिदिन ज्ञान मुरलियों में अपने संस्कारों को पावन बनाने तथा अनेक कर्मों को महान बनाने की युक्तियां सीखते हैं। जन्म जन्मांतर से हम माया अथवा विकारों की जिन जंजीरों में जकड़े आए हैं अब उन्हें तोड़कर उनसे आजाद होने का ढंग अब हमें परमपिता परमात्मा शिव की कृपा से ज्ञात हुआ है। तभी तो अब हम अंधकार से निकलकर प्रकाश, अशांति से बचकर शांति के मार्ग पर दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसा चित्र वैसा चरित्र। अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाने के लिए पहले तो परमपिता परमात्मा शिव ने पवित्र लक्ष्य दिया है। पवित्र लक्ष्य को सामने रखने से ही पवित्र लक्षण भी आते हैं। बाबा ने हमारे सामने सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, उत्तम मर्यादा युक्त, संपूर्ण अहिंसक बनने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले हम ये मान बैठे थे कि इस संसार में थोड़े बहुत विकार या अवगुणों का होना स्वाभाविक है। हम संसार में जितने भी नर नारियों को देखते हैं उनमें कोई न कोई अवगुण और किसी न किसी मात्रा में विकार है। अतः हम यह मान बैठे थे कि गलतियां तो हर एक मनुष्य से होती ही है। तब हमें यह मालूम नहीं था कि हमने जिस युग के नर नारियों को देखकर अपनी ऐसी धारणाएं बनाई हुई है वह तो कलयुग है, जो ऐसी नर नारियों के कारण ही निकृष्ट माना जाता है। मनुष्य की यह स्टेज अथवा स्थिति तो पतन की स्थिति है। जिस मनुष्य को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ या अशरफ उल मखलूकात माने बेस्ट ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है वह मनुष्य कोई और था। वह उस काल का मनुष्य था जिसे कृत युग, देव युग अथवा सत्ययुग कहा जाता है। आज का मनुष्य देवता पद से तो गिरा हुआ है ही, यह मनुष्यता से गिर चुका है, क्योंकि यह तो हिंसक पशुओं की तरह हिंसा वृत्ति वाला है। शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है और केवल इंद्रिय स्तर पर ही जीवन जी रहा है। परमपिता परमात्मा शिव ने हमारे सामने संपूर्ण दिव्य नर और नारी का चित्र खींचा है, जिसे कि भारत की संस्कृति में श्री लक्ष्मी नारायण अथवा देवता माने मैन गॉड और देवी माने वुमन गॉडेस कहा गया है। उस पूर्णतः पवित्र प्रवृत्ति की स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थी जीवन का आदर्श भी परमपिता शिव ने सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा और आदि माता जगदम्बा के नाम रूप से हमारे सामने समक्ष रखा है। अतः अब जबकि उच्च कर्मों का चित्र हमारे सामने है, तब हमारे लिए चरित्र भी बनना सहज है। जैसे लक्ष्य वैसा लक्षण और जैसा चित्र वैसा चरित्र, यह फार्मूला हमारे सामने रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव ने हमारे चलने के लिए कर्मों की जो लकीर लगाई है उसके मार्ग चिन्ह कुछ इस प्रकार है। यह सृष्टि एक रंगशाला है, हम इसके एक्टर। परमपिता परमात्मा शिव ने हमें समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक रंगमंच है। हम मनुष्य आत्माएं परम धाम अथवा ब्रह्मलोक से इस बृहद नाटक मंच पर अपना अपना पाठ अदा करने के लिए आई है। अपने पाठ ही के अनुसार हम जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। जैसे किसी नाटक में राजा का पाठ अदा करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में यह सत्य अलिप्त रीति से रहता ही है कि वास्तव में वह राजा नहीं बल्कि अमुक साधारण ही व्यक्ति है और केवल इस पाठ में ही वह राजा बना हुआ है और अमुक अभिनेत्री माने एक्ट्रेसेस उसकी रानी बनी हुई है। अतः पाठ पूरा होते ही वह पहले की तरह ही हो जाता है। नाटक में होने वाली जीत हार को अभिनय अथवा खेल मात्र ही मानते हैं। नाटक में आने वाली चिंताजनक एवं भयानक स्थितियों से वह अपने जीवन को दुखी नहीं बना लेता। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा शिव ने हमें यह शिक्षा दी है कि हमें भी इस सृष्टि रूपी विराट एवं अनादि नाटक में स्वयं को एक एक्टर मानते हुए इसमें आने वाली सुख दुख की परिस्थितियों से अपने जीवन को लिपायमान नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इन्हें खेल ही का एक भाग मानकर इनसे न्यारे हो स्वस्थिति में रहना चाहिए। स्वरूप में टिके रहने की यह एक अच्छी युक्ति है। दुख एवं अशांति से छूटने पर परंतु फिर कर्म को करते रहने का यह एक ऐसा असामान्य तरीका है जो अद्वितीय है। इस दृष्टिकोण को अपना लेने से मनुष्य में अकर्मण्यता का दोष भी नहीं लगता, वह आलस्य एवं प्रमाद के वशीभूत भी नहीं होता। वह अर्जुन की तरह कर्म रूपी धनुष बाण भी को भी छोड़कर की कर्तव्य भी मूड माने व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू बी डू के मोह और विषाद की उलझन में नहीं आता और विकर्म करके दुख का भागी भी नहीं बनता, बल्कि वह एक नाटक के पात्र की न्यायी अपने कृत्य को बड़ी खूबी से बड़ी कला से और कौशलता से करता है, परंतु वह उसे नाटकीय ढंग से ही करता है। अर्थात वह हाव भाव बनाता तो है, परंतु उसका वास्तविक स्वभाव जैसा है वह वैसा ही रहता है। नाटक के इस अनुकरणीय उदाहरण में दूसरी एक और यह बात भी है कि जैसे नाटक में हरेक अभिनेता अथवा अभिनेत्री योग्यता के अनुसार एक बने बनाए कथन माने स्टोरी के अनुसार अपना अपना अभिनय करते हैं, वैसे ही इस बृहद वृष्टि सृष्टि नाटक में हम कल्प कल्पांतर अपनी अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार जो जो पाठ करते हैं वही वही अब हम हर कल्प के पुनः पुनः पुनरावृत्त करते हैं। उस बनी हुई स्टोरी को ही हम अदा करते हैं। अतः अब हमारे जीवन में जो कुछ हुआ है वह पूर्व कल्प में भी हुआ था, क्योंकि स्टोरी तो वही है, हम आत्माएं रूपी एक्टर भी वही है, सृष्टि भी वही है और समय भी वही आ पहुंचा है। अतः हमारे सामने चाहे कैसी भी विषम अथवा विकट परिस्थितियां आए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ड्रामा माने दिस इज देयर इन द वर्ल्ड ड्रामा ऐसे कहकर स्वरूप स्थित हो जाना चाहिए। हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही तो यह ड्रामा बना है। अतः हमारे ही किए हुए कर्मों का खाता जब हमारे सामने है तो भयान्वित होने की क्या बात है। वह पाठ भी कर्म और परिणाम की श्रृंखला में एक कड़ी ही तो है जो कि अगले क्षण में दूसरे दृश्य को स्थान देंगी। यह वर्तमान दृश्य तो सदा रहना ही नहीं है, अतः भावी ड्रामा यह तो बनी बनाई ही बन रही है। ऐसा सोचकर हमें अपनी शांति को भंग नहीं होने देना चाहिए। पुनश्च ड्रामा में हरेक का अपना अपना पार्ट होता है। कोई तंत्री बनता है तो कोई मंत्री, कोई नेता बनता है तो कभी अभियंता, कोई माने कलेक्टर बनता है। इसमें किसी से ईर्ष्या करने की या गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि हरेक को अपना अपना पार्ट अदा करना होता है। ड्रामा में विविधता यानी वैरायटी का होना तो स्वाभाविक ही है, उसके बिना तो उसमें न रोचकता होगी, न दृश्यांतर होंगे और न ही रूपांतर। अतः विभिन्नता एवं स्थिति परिवर्तन ही तो ड्रामा है। इसमें हास्य रस, वीर रस, शांत रस सभी रस चाहिए होते हैं, वरना तो यह शुष्क निरस कलाहीन तथा बोर करने वाली एक वृत्ति हो जाएंगी। अतः यह बात जानकर सचमुच ही किसी के पार से ईर्ष्या करना ख्वामखा चिंता को चिता पर डालना है। रीस यानी ईर्ष्या करने की बजाय रेस यानी कि स्पर्धा करना ज्ञानोचित है। उससे हमें न अशांति होगी, न तनाव ही पैदा होगा और बल्कि हमारी उन्नति हो सकती है। दूसरी लकीर, अब घर जाना है और फिर सतयुग की सृष्टि में आना है। कोई भी कर्म यदि ठीक समय पर और उपयुक्त अवसर पर किया जाता है तो ठीक होता है। आजकल तो मनुष्य घड़ी और कैलेंडर का खूब प्रयोग करते हैं। समय मनुष्य की वृत्ति को भी उपयुक्त बनाने में सहायक होता है। अमृत वेले में जो ताजगी शांति और सात्विकता की लहर होती है वह मनुष्य को भी ताजा शीतल और मनोवांछित कर्मों में प्रवृत्त करती है। दोपहर के समय का वातावरण दूसरी ही प्रकार का होता है। अतः मनुष्य को योगाभ्यास इत्यादि प्रातःकाल ही में करना चाहिए। अब हमें यह देखना है कि जैसे 24 घंटे के दिन के हिसाब से दिन और रात इत्यादि बने हुए, वैसे ही कल्प घड़ी में भी दिन और रात है तथा आत्माओं के इस सृष्टि में आने के फिर अंत में यहाँ से जाने के भी समय है। उस दृष्टिकोण से वर्तमान काल कल युग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम समय है, जिसको ब्रह्मा की रात्रि के अंत और ब्रह्मा के दिन के आरंभ का संधि काल भी कहा जाता है। इसे ही अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। यही समय योगाभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी काल में ही परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा देते तथा सहज राजयोग सिखाते हैं। इस रात्रि के अंत में ही प्रायः सभी मनुष्य आत्माएं योगाभ्यास के लिए फलस्वरूप परम धाम अथवा ब्रह्मलोक को लौट जाती है। अतः अब जबकि वही समय है तो हमें अपनी स्थिति में यह बात धारण करनी चाहिए कि हमें वापस परम धाम जाना है। इस स्मृति से हमारी बुद्धि का लंगर इस संसार रूपी तट से उठ जाएगा और हमारा जीवन रूपी जहाज परम धाम की ओर चलने के लिए लग जाएगा। यह उपराम वृत्ति हमारे समस्त पुरुषार्थ के लिए जरूरी है। जब मनुष्य को कहीं जाना होता है तब उसी की मन रूपी आंख लक्षित रूपी स्थान पर टिक जाती है, उसके हाथ यात्रा की सामग्री को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, उसकी बुद्धि अब विदा की घड़ी की ओर लग जाती है। इस प्रकार अब मुझे यहां से अपने घर परम धाम जाना है, इस स्मृति से मनुष्य का मन परम धाम पर टिक जाता है। वैराग्य और अभ्यास जिन्हें योग के लिए अत्य आवश्यक माना गया है, इस दृष्टिकोण को अपनाने से सहज ही आ जाते हैं। मनुष्य ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर चल पड़ता है और एक स्थान पर मन स्थित करने की जो धारणा है वह सहज ही हो जाती है। फिर जब मनुष्य को यह भी याद रहता है कि परम धाम जाकर मुझे सतयुगी पावन दैवी सृष्टि में लौटना है, जहां अशांति तथा मनोविकार नाम मात्र भी नहीं होते, तो वह स्वयं में दिव्य गुणों को धारण करने तथा स्वयं को पवित्र बनाने के पुरुषार्थ में पूरी तरह जुट जाता है। वह तनाव और तंग दिली के संस्कार छोड़कर अब स्वयं को शांतिपूर्वक संस्कारों वाला बनाना शुरू कर देता है। कलह कलेश की आदतों को मिटाने का बरसकर यत्न करता है। इस पर भी चूंकि वह भली भांति जानता है कि जो आत्मा अभी पवित्र नहीं बनेगी उन्हें धर्मराजपुरी में अपने विकर्मों के कारण दंडित होना पड़ेगा, अब वह स्वयं को पवित्र एवं योग युक्त बनाने का तथा 16 कला संपूर्ण देवपद प्राप्त करने का पूर्ण पुरुषार्थ करता है। अतः मेरा तो यह विश्वास है कि यदि उपरोक्त 3-4 युक्तियों को कोई मनुष्य अपने जीवन में पूरी तरह अपनाए तो वह विकर्मों से छूट सकता है तथा पवित्र बनो और योगी बनो कि ईश्वरीय आज्ञा के पालन द्वारा न केवल इस जन्म में बल्कि सदा के लिए शांति का अधिकार अथवा वरदान प्राप्त कर सकता है। यथार्थ कर्म करते समय मनुष्य के सामने यह भाव भी तो स्पष्ट होना चाहिए कि वह किसके लिए कर्म करता है। जन्म जन्मांतर तो मनुष्य अपने लौकिक संबंधियों ही के लिए कर्म करता चला आया है। आज भी वह हर बात में यह कहा करता है, क्या करूं, बाल बच्चेदार आदमी हूं, ऐसा करना ही पड़ता है। गोया वह अपनी पत्नी तथा बच्चों अथवा अपने घर गृहस्थी तथा अपनी देह के लिए कर्म करता है। कर्म के लिए यह बहुत ही घटिया तरीका है। इससे ही मनुष्य के मन में लगाव फिर तनाव पैदा होता है। इसकी बजाय अब उसे यह सोचकर कर्म करने चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो विशाल यज्ञ माने अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है, मुझे उसके लिए कर्म करना है। उसके मन में त्याग एवं सेवा की भी भावना रहनी चाहिए, वो रहेंगी, उसमें ममत्व और लौकिकता भी नहीं आएंगी, परिणाम स्वरूप अशांति नहीं होगी। पुनश्च कर्म करते समय मनुष्य में बालक सो मालिक की स्मृति रहनी चाहिए, अर्थात यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं तो शिव बाबा का बालक हूं, मालिक तो परमात्मा है। इस स्मृति से उसे परम पिता का सदा साथ अनुभव होगा, उसमें बालक की तरह सरलता और हल्कापन भी रहेगा और मालिक की तरह जिम्मेदारी भी रहेगी। तीसरी रेखा है कर्मों की गान गति। गीता में भगवान ने कहा है, हे वत्स, कर्मों की गति अति गहन है, इसे पंडित और विद्वान नहीं जानते, इसीलिए तू कर्म गति का ज्ञान मुझ ही से प्राप्त कर। बात है भी ठीक, स्वयं कर्म के अधीन मनुष्य कर्म की गहन गति को अपने ही यत्नों से कैसे जान सकता है। अतः हम देखते हैं कि परमपिता शिव हमें चार विषयों का ज्ञान स्वयं आकर कर देते हैं। यह ज्ञान मनुष्य चाहे वे कितने ही बड़े दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों न हो, नहीं दे सकते, क्योंकि वे तो स्वयं ही जन्म मरण के चक्कर में हैं। अब हम अपने अनुभव द्वारा भी यह जानते और मानते हैं कि सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग का जो ज्ञान हमें उन परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा दिया है, वह ज्यों का त्यों न तो किसी शास्त्र में वर्णित है, न ही कोई गुरु गोसाई वह ज्ञान देता है, न ही कोई दे सकता है, क्योंकि मनुष्य को अपने अनेक जन्मों के आदि मध्य अंत का पता नहीं है। इसके अतिरिक्त परमात्मा शिव कहते हैं, मैं जो हूं और जैसा हूं उसका ज्ञान भी मैं स्वयं ही अवतरित होकर कर देता हूं। जैसे संसार में लौकिक पिता ही अपने पुत्रों को परिचय देता है, वैसे ही आत्माओं रूपी वत्सों को भी अपना परिचय स्वयं परमात्मा ही देते हैं। ऋषि मुनि तो परमात्मा के बारे में नेति नेति ही कहते आए हैं, उन्होंने परमात्मा के बारे में इद इथत ज्ञान नहीं दिया, अर्थात यह नहीं बताया कि परमात्मा का ऐसा स्वरूप है। परमात्मा को ज्ञान चक्षु का दाता और दिव्य दृष्टि विधाता कहा गया है, वही दिव्य बुद्धि तथा दिव्य साक्षात्कार करा के अपने वत्सों को अपने स्वरूप का सही बोध कराते हैं। फिर मनुष्य जब परमपिता का यथा सत्य परिचय नहीं दे सकते तो वे वास्तविक योग की शिक्षा कैसे दे सकेंगे। जब वे स्वयं ही देह अभिमान में हैं, तो वे दूसरों को देही के अनुभव में कैसे स्थिर कर सकेंगे। मनुष्य तो परमात्मा द्वारा सिखाए गए आदि सनातन योग को ही भूल जाते हैं। अतः भगवान ने गीता में भी कहा है कि हे वत्स, जब यह योग प्रायः लुप्त हो जाता है तो मैं ही अवतरित होकर कर इसकी शिक्षा देता हूं। चौथे भगवान के ये भी महावाक्य है कि कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म तथा गहन है, इसे भला मनुष्य क्या जाने। कर्म, अकर्म, विकर्म तथा उसकी गति को भी तू मुझ द्वारा ही जान। अब प्रश्न उठता है कि कर्मों के भेद दो मनुष्य ने पहले ही बता रखे हैं, क्रिया कर्म, क्रियामान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, सत्कर्म, अकर्म, विकर्म, कुकर्म इत्यादि की परिभाषाएं हैं। कर्म के बारे में विधि और निषेध, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी स्मृति ग्रंथों में तथा धर्म शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है। तब परमात्मा अवतरित होकर हमें कर्ता और कर्म तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, कर्म इंद्रियों और कर्म फल के बारे में नई बातें कौन सी बताते हैं, जिसके कारण उनके महावाक्य है कि पंडित गण भी इस विषय में अंधकार में है। इसके उत्तर में हमारा कथन है कि परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कर्म, कर्म गति तथा विधि निषेध का इतना ज्ञान दिया है, उस सारे ज्ञान को तो कोई ग्रंथों में भी लिपिबद्ध करना संभव नहीं है। उन्होंने कर्म के विषय में कई ऐसी मर्यादाएं भी बताई है जो सभी के लिए है, और व्यक्तिगत रूप से स्थिति तथा परिस्थिति के अनुसार कर्म के पथ पर अनेकानेक का मार्गदर्शन किया है। उस सभी विस्तार का सार हम यहां दो शीर्षकों के अंतर्गत देंगे। उनमें से एक है व्यक्तिगत पुरुषार्थ अथवा साधना संबंधित, जिसका संबंध अपने लक्ष्य का पुरुषार्थ करने, मनुष्य से देवता बनने, निःश्रेयस मुक्ति एवं जीवन मुक्ति अथवा कैवल्य प्राप्ति करने से है। दूसरा है संसार में हो रहे विभिन्न प्रकार के कर्मों के बारे में ज्ञान। इन दोनों को मिलाकर हमने यहां अत्यंत संक्षेप में कुल 16 ही ज्ञान बिंदुओं को स्पर्श किया है। इन 16 को जानकर तद अनुसार कर्म करने से मनुष्य 16 कला संपूर्ण बन सकता है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ संबंधी हम देखते हैं कि मनुष्य स्वयं को पवित्र, महान अथवा दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए जो पुरुषार्थ करता है, उसमें वह एक तो दान पुण्य, जैसे मुसलमान लोग जकात, और अंग्रेजी भाषा भाषी ईसाई लोग चैरिटी कहते हैं, करता है। दूसरे वह सेवा, जिसे मुसलमान लोग खिदमते खल्क और ईसाई लोग सर्विस ऑफ मैनकाइंड या दया माने रहम, मर्सी, कंपेशन कहते हैं, को अपनाता है। तीसरे वह स्वाध्याय, पाठ या सत्संग के दैनिक नियम का पालन करता है। चौथे वह पूजा, प्रार्थना, निमाज, यज्ञ, इबादत, योग, तपस्या इत्यादि का आश्रय लेता है। पांचवे वह सत्य, अहिंसा और निर्विकार जीवन को ही अपनाने का यत्न करता है। छठवे यदि उससे कोई भूल हो जाए तो उसके लिए परमात्मा, इष्ट अल्लाह या लॉर्ड गॉड के सामने उसे स्वीकार माने कन्फेस करता है, अथवा उसके लिए व्रत, प्रायश्चित इत्यादि साधन अपनाता है। हम इन चहों की चर्चा करते हुए बताएंगे कि शिव बाबा ने इनके बारे में क्या बताया है। पहले की दान पुण्य माने चैरिटी, धार्मिक लोग मानते हैं कि दूसरों को ईश्वरार्थ दान देने से मनुष्य पर परमात्मा कृपा करते हैं। अतः निर्धनों की सहायता के लिए ईसाइयों ने सेल्वेशन आर्मी, कुछ एक मुसलमानों ने जमाते खुदाई खिदमतगार या वक्फ, रिलीजियस इंडोलमेंट्स इत्यादि बनाई हुई है। ईसाई लोग क्रिसमस के दिन विशेष रूप से गरीबों के बच्चों के लिए मिठाई व खिलौनों की सौगात, कपड़े आदि देते हैं। मुसलमान लोग भी रोजों के दिनों में और खास तौर से ईद के अवसर पर जकात या खैरात या दान देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि दान करने वालों पर खुदा खैर करता है। इसी प्रकार हिंदी लोग भी अनेकानेक अवसरों पर विशेष तौर से दान पुण्य करते हैं। वे धर्मशालाएं बनवाते हैं, प्याऊ खुलवाते हैं, खाने के लिए लंगर या भंडारा चलाते हैं, या धन दान, वस्त्र दान इत्यादि करते हैं। यहां तक कि आज हम सुनते हैं कि धार्मिक रिलीजियस माइंडेड या सामाजिक माने सोशल लोग गुर्दे का दान रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेशन भी कराते हैं। इस पर लोगों ने कई लोक कल्याणार्थ पब्लिक चैरिटेबल संस्थाएं भी बनाकर कर रखी है अथवा जनहित के लिए कार्य फिलान्थ्रोपेटिक वर्क चला रखे हैं। अब परमात्मा शिव ने हमें समझाया है कि क्या दान करने से क्या प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि धन दान करने से किसी सेठ साहूकार संपत्तिवान के घर में जन्म होता है और काफी बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है। अस्पताल खोलने से स्वास्थ्य लाभ होता है, विद्यालय खोलने से विद्योपार्जन होता है, अन्न जल का दान करने से मनुष्य को अन्न धन की कमी नहीं रहती। परंतु कर्मों के आदि मध्य अंत को जानने वाले परम पिता शिव ने बताया है कि इन सभी से ये फल तो प्राप्त होते हैं परंतु यह अल्पकाल ही के लिए होते हैं तथा इनसे मनुष्यों को स्वार्गिक सुख नहीं मिलता क्योंकि वह पूर्णतः पवित्र नहीं बनता। पुनः जिनका धन वस्त्र स्थान इत्यादि का दान दिया जाता है वे भी प्रायः मनुष्यों के आश्रय अथवा दान पर ही जीवन को आधारित कर देते हैं। इससे उन्हें एक आदत सी पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने कर्मों का हिसाब भी तो बाद में चुकता करना पड़ता है। जो लिया है उसका किसी प्रकार तो बोझा उतारना ही पड़ता है। अतः परमात्मा शिव का मत है कि सर्वश्रेष्ठ दान गुणों का दान है। यदि हम मनुष्यों को ज्ञान दान दें तो उनसे उन्हें स्वरूप का तथा दाता परमात्मा का बोध होता है और वह जीवन का लक्ष्य जानकर अच्छे कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। वे सदाचारी तथा निर्विकारी बनते हैं जिसके फलस्वरूप उनका भविष्य सुधर जाता है। परंतु ज्ञान दान से भी अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान से मनुष्य आत्मा का संबंध स्वयं परमात्मा से जुड़ जाता है जिसके फलस्वरूप उसका जीवन ही पलट जाता है और वह सुख शांति संपन्न बन जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज योगदान शब्द सहायता तथा सहयोग का पर्यायवाची हो गया है क्योंकि मनुष्य को योग और क्षोम दोनों की सिद्धि होती है। योगदान द्वारा ही गुण दान भी हो सकता है। योग ही वास्तव में सहयोग है। योग द्वारा मनुष्य का रोग और भोग समाप्त होता है और दुख तथा वियोग का भी अंत होता है। पुनश्च ज्ञान को नेत्र भी कहा गया है, परम औषधि भी। यह औषधि ऐसी है जो आदि और व्याधि दोनों का अंत कराती है। यह अमृत धारा है, यह संजीवनी बूटी है। ज्ञानदाता ही सच्चे अर्थों में स्वास्थ्य केंद्र माने हेल्थ केयर ऑफ द बॉडी एंड द सोल खोलना तथा नेत्र दान करना है क्योंकि इस द्वारा मनुष्य स्व में स्थित होकर कर शारीरिक आरोग्य प्राप्त करता है तथा उसे दिव्य चक्षु भी प्राप्त होता है। ज्ञान को रतन भी कहा गया है और धन भी क्योंकि इस द्वारा ही नर नारी सदा के लिए धन धान्य के भंडार प्राप्त कर लेते हैं। परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि ज्ञान रूपी धन के दान द्वारा ही तो प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती ने पूज्य विश्व महाराजन श्री नारायण और पूज्य महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में स्वार्गिक राज्य भाग्य प्राप्त किया था। अतः अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी परमात्मा शिव ने समझाया है कि यह ज्ञान धन दान करो। यह ज्ञान ही आत्माओं के लिए भोजन भी है और जल भी क्योंकि इस द्वारा ही आत्माओं की शांति की प्यास तृप्त होती है और प्रभु मिलन रूपी शुदा शांत होती है। अतः यही सर्वश्रेष्ठ दान है अथवा ईश्वरीय ज्ञान एवं योग के द्वारा योग के द्वार को खोलने तथा उनके प्रचलन के कार्य में मनसा वाचा कर्मणा सहयोग देना ही सर्वश्रेष्ठ फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। महादानी बनना, विश्व कल्याणकारी बनना तथा परोपकारी बनना है। दूसरा, सेवा, सोशल सर्विस। संसार में सेवा भी कई तरह की है, परंतु सभी प्रकार के सेवा कार्यों के पीछे भाव दुखियों को सुखी बनाने का है। सेवा करने से मनुष्य में नम्रता, उदारता, त्याग, कार्यकुशलता, सहयोगीपन इत्यादि कई गुणों का विकास होता है। इन गुणों के ही फलस्वरूप मनुष्य को अपने उच्च कर्तव्य का फल भी श्रेष्ठ ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सेवा बिना मेवा नहीं। अध्यात्म में विकास न रखने वाले भी बहुत से लोग समाज सेवा यानी सोशल सर्विस के कार्यों में लग जाते हैं। वे बालकों तथा बालिकाओं की शिक्षा, महिलाओं के जीवनोत्थान, पतित स्त्रियों के कल्याण कार्य, दलित एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति से संबंधित कार्य तथा अपठित के लिए पठन पाठन के साधन जुटाने आदि कार्यों में लग जाते हैं। भूखे नंगों तथा बाढ़ पीड़ितों लोगों को राहत पहुंचाने इत्यादि के कार्य करते हैं। गोया वे जनता के हित के लिए ऐसा कार्य में अपने समय और शक्ति को जुटा देते हैं। परंतु परमात्मा कहते हैं कि आज करोड़ों लोग स्वयं को ही नहीं जानते, वे कर्मों की श्रेष्ठता के साधनों को ही नहीं अपनाते और उन्हें परमपिता परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है। अतः ऐसे अपाठितों को पहले जीवन के मूल्यों का ज्ञान देना, मनुष्यों को मनुष्यता का पाठ पढ़ाना, उन्हें अच्छी आदतें सिखाना जरूरी है। अक्षर शब्द का अर्थ है जो विनाश न हो, अतः वर्णमाला के अक्षरों के ज्ञान से भी पहले तो मनुष्य को नाश न होने वाली माने अक्षर माने आत्मा का तथा परमपिता परमात्मा का ज्ञान जरूरी है तथा आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ना भी आवश्यक है। हाँ, भाषा के अक्षर पढ़ना भी आवश्यक है। हाँ, भाषा के अक्षर पढ़ना भी निस्संदेह अच्छा है, परंतु एक अच्छा नागरिक अथवा एक अच्छा मनुष्य बनने की विद्या पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वरना पढ़ लिख कर भी यदि मनुष्य धोखेबाज, रिश्वतखोर, स्मगलर, जमाखोर तथा काम वासना द्वारा दूसरों को पतित बनाने वाला और जनसंख्या में अति वृद्धि करने वाला हो तो वह समाज के लिए अभिश्राप ही है। अतः समाज के लिए सबसे बड़ी सेवा मनुष्य को ईश्वरीय शिक्षा द्वारा नैतिकता का एवं आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाना है। काम क्रोध आदि विकारों से कोड़ी बनी आत्मा के कृष्ण रोग को दूर करने की सेवा करना है। मन में विकारों की बाढ़ से पीड़ित, क्रोध के भूचाल से दुखित आत्मा को राहत पहुंचाना एक महान समाज सेवा है, जिससे कि समाज की सभी आत्माओं का समूल सभी आत्माओं की समस्याओं का समूल अंत हो जाता है। आपदा पाने पर लोगों को वस्त्र, अन्न, औषधि तो देनी ही चाहिए, परंतु इस दुखग्रस्त संसार के ढांचे को ठीक करने के लिए, ताकि आगे के लिए आपदाएं विपदाएं आए ही नहीं, मनुष्य मात्र को सदाचार एवं सात्विकता का पाठ पढ़ाने रूपी समाज सेवा से लाभान्वित करना आवश्यक है। तीसरे, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा पाठ, योग, यज्ञ आदि। हमने बताया है कि मनुष्य अपनी आत्मिक उन्नति के लिए पूजा पाठ, सत्संग, योग, साधना, तपस्या, प्रार्थना इत्यादि करता है, परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने अब हमें इन सभी का सही स्वरूप समझाया है। परमपिता परमात्मा ने बताया है कि किसी धार्मिक पुस्तक को पढ़ लेना या पढ़कर उस पर मात्र मनन करना ही स्वाध्याय नहीं है, बल्कि स्व में ध्यानस्थित होना अथवा स्थित होना ही सच्चा स्वाध्याय है। इसी प्रकार साध्य परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त करके मन मत को उसकी स्मृति में समाहित करना ही वास्तविक साधना है। इस द्वारा आत्मा को परमात्मा के संग अथवा निकट्य का अनुभव कराना ही सही अर्थों में सत्संग अथवा उपासना है। इसी योगाग्नि में आत्मा को तपाकर पवित्र बनाना ही सच्ची तपस्या है। इसके लिए ही तो परमपिता परमात्मा शिव ने हमें योग की विधि और सिद्धि का स्पष्ट ज्ञान दिया है। इस योगावस्था में रहते हुए कर्म करना ही तो वास्तव में कर्म योग है। आत्मा रूपी धर्म में स्थित होना स्वधर्म का पालन करना है। कर्म करते हुए भी पवित्र रहने अथवा पवित्रता पूर्वक कर्म करना ही तो धर्म माने पवित्रता और कर्म का समन्वय है। यही तो साधना की सही रीति है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने यह भी कहा है कि स्थूल अग्नि को धारण कर स्थूल वस्तुओं को होम करना ही यज्ञ नहीं, बल्कि ज्ञानाग्नि तथा योगाग्नि जगाकर उसमें काम स्वाहा इस प्रकार अपने मनोविकार की आहुति देना ही वास्तविक ज्ञान यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ अथवा रुद्र यज्ञ है, जिसके द्वारा ही विश्व में शांति की स्थापना में हम भी योगदान करते हैं तथा भविष्य के लिए सभी मनोकामनाएं एक साथ पूर्ण कर सकते हैं। इसी तरह सच्ची इबादत नमाज पूजा प्रेयर मात्र इतना ही नहीं है कि हम प्रभु के आगे झुक जाएं, उनकी तो महिमा करें, परंतु स्वयं पतित एवं विकारी बने रहें। परमात्मा की सच्ची महिमा इसी में है कि हम उनके महान गुणों को धारण करके स्वयं महान एवं महिमा योग्य अथवा पूज्य अर्थात पवित्र बने। यदि हम प्रार्थनाएं ही करते हैं तो हम में भीख मांगने की आदत पड़ जाती है और हम अपवित्रता को पूर्ण दृढ़ता से नहीं छोड़ते। यह कमजोरी तथा अपनी ही ग्लानी करने की आदत हमें पूर्ण पवित्र बनने ही नहीं देती। एक प्रकार से हमारे पूर्णोत्कर्षण में यह एक बाधा बन जाती है। निश्चय ही परमात्मा को संबोधन करना तो अच्छा है, अपने मन की बात उनके समक्ष रखना भी उचित है, परंतु अपनी नीचता ही का बखान या गायन करते रहना, स्वयं को प्रतिदिन कामी क्रोधी कहते रहना है कि एक गलत नीति है। अतः योग ही वास्तविक तपस्या उपासना साधना और साध्या है, जिससे ही हमारा पूर्ण विकास होता है। चौथे सत्य अहिंसा और निर्विकार जीवन। प्रायः लोग यह भी मानते हैं कि हम जो वाणी बोलें वह सत्य और प्रिय हो, हमारे कर्मों द्वारा किसी का हनन न हो, हम किसी को भी दुख न पहुंचाएं और हमारा जीवन निर्विकारी भी हो। परंतु साथ ही लोग जाने अनजाने ऐसे ग्रंथों का अवलोकन तथा अध्ययन करते और उसमें निश्चय भी करते हैं कि जिसमें आत्मा परमात्मा सृष्टि इत्यादि के बारे में असत्य ज्ञान है। वे निर्विकार तो रहना चाहते हैं, परंतु साथ साथ यह मानकर कि बच्चों पर क्रोध किए बिना तो वे सुधरते नहीं, मोह किए बिना गृहस्थी चलती नहीं, लोभ किए बिना कमाई होती नहीं, रोग अहंकार के बिना व्यक्ति प्रभावशाली माने इम्प्रेसिव पर्सनालिटी नहीं बनता और काम वासना का भोग किए बिना मन मानता नहीं, वे थोड़ा बहुत विकारी भी बने रहते हैं। परंतु अब परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि पवित्रता या निर्विकारिता का अर्थ पूर्ण पवित्रता है। जैसे सप्ताह में एक बार सिगरेट पीने वाले को भी स्मोकर तो कहा ही जाता है, उसी प्रकार थोड़ा बहुत विकार होने पर भी मनुष्य को कहा तो विकारी ही जाएगा। अतः शिव बाबा ने हमें पूर्णतः निर्विकारी बनने का लक्ष्य दिया है और मार्ग भी दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण अहिंसा है, क्योंकि काम कटारी चलाना ही जीव घात तथा हिंसा प्रारंभ करना तथा मूल है, हिंसा प्रारंभ का मूल है। विकारी ग्रंथों को पढ़कर आत्मा ही परमात्मा, मनुष्य आत्मा निर्लेप है। श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी जिसने उन्हें 161,080 बच्चे पैदा हुए, ब्रह्मा जी सरस्वती पर मोहित इत्यादि इत्यादि बातों को मानना तथा कहना, असत्य में विश्वास करना तथा असत्य बोलना है। यह पावन एवं पुण्य आत्माओं की मिथ्या निंदा करना तथा उन पर कलंक लगाकर पाप का भागी बनना है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव ने हमें अपनी आत्मिक उन्नति से संबंधित इन प्रश्नों, इन पर विशेष कर्मों तथा उनकी गति का हमें नया परिचय दिया है। पहले किसी ने भी इस प्रकार का दान, यज्ञ, यात्रा, योग, सत्संग, सत्य, अहिंसा इत्यादि कर्मों की ऐसी व्याख्या नहीं की थी। पांचवा, भूल होने पर प्रायश्चित तथा व्रत इत्यादि। प्रायः भगत लोग कोई भूल, पाप, विकर्म इत्यादि हो जाने पर उपवास या व्रत करके स्वयं को दंडित करते हैं। वे गंगा में जाकर स्नान करते हैं अथवा किसी यात्रा तीर्थाटन में लग जाते हैं या मौन ही धारण कर लेते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि पुनः उस भूल, विकर्म अथवा पाप को न करने की प्रतिज्ञा अथवा दृढ़ धारणा ही सच्चा व्रत है। ईश्वरीय ज्ञान का अधिकाधिक अध्ययन एवं श्रवण ही वास्तविक गंगा स्नान है, जिससे कि आत्मा पावन होती है। मन द्वारा परमपिता परमात्मा ही के पास जाने का पुरुषार्थ सच्ची यात्रा है। मन को तीर्थ स्वरूप माने पावनकारी परमात्मा की स्मृति में स्थित करना अथवा उसके गुणों का सत्संग करना ही वास्तव में तीर्थाटन है, और व्यर्थ एवं विकारी संकल्पों को शांत करना ही मन का सच्चा मौन है। इस प्रकार मन को दोबारा भूल न करने से रोकना ही सच्चा प्रायश्चित है। योगाभ्यास ही परमात्मा के पास बैठने वाला सही उपवास है। इस उपवास में ही मन को बुरे संकल्प रूपी खाना नहीं मिलता और उसका संस्कार ढीला हो जाने से यह बुराई छोड़ देता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को सुधारने वाले व्यक्ति का ध्यान स्वयं को ठीक करने में लगा रहता है। वह दूसरों के अवगुणों को नहीं देखता। कर्म के बारे में सभी राज मालूम हो जाने के कारण वह नाराज नहीं होता। विकारों का दास न होने के कारण वह कभी उदास भी नहीं होता। वह अपनी प्रवृत्तियों को पवित्र करने की धुन में लगा रहता है। इसीलिए वह अपने चित्त को मैला करने वाली बातें न देखता है, न सुनता है, इसीलिए वह सदा खुश रहता है, सुस्त, अशांत या दुखी नहीं होता। शिव बाबा ने यह भी कहा है कि माने पहला, भूल को अपने दिलवर माने परमात्मा को बता देने से भूल आगे बढ़ेंगी ही नहीं, बल्कि आधी हो जाएंगी। यदि भूल बार बार दोहराई जाएंगी तो पक्की हो जाएंगी। फिर ज्ञानवान होते हुए भी जो व्यक्ति भूल करेगा उसको उसका 100 गुना दंड मिलेगा। अतः बाबा ने दूसरों की भूल चूक को मन में न रखने, अपनी भूल को न दोहराने तथा उसके बारे में सावधान रहने के लिए कहा है। बाबा ने यह भी समझाया है कि सबसे बड़ी भूल अपने आप माने आत्मा को भूलना तथा बाप परम पिता परमात्मा को भूलना, इस भूल से ही सभी भूलें पैदा होती है। इसको मिटाने से सभी भूलें मिट जाती है। कर्म गति गहनो कर्मस्य गति, कर्म की गति गहन है, उसे मनुष्य अपने ही परिश्रम से नहीं जानते। गीता में भगवान ने कहा है कि मुझे स्वयं ही अवतरित होकर कर्म की गुत्थी को सुलझाना पड़ता है। अतः प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें कर्मों के कौन से गहन रहस्य बताए हैं। इन प्रश्नों को लेकर ही कुछ एक गहन रहस्यों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। हमारे कर्म हमारे आहार व्यवहार व्यापार आचार इत्यादि के रूप में ही व्यक्त तथा मूर्त होते हैं। वे ही हमारे जन्म भोग आदि का भी रूप लेते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम कर्म गति के बारे में कुछ एक रहस्य प्रकट करेंगे। परमपिता परमात्मा शिव ने कर्मों की गति के विषय में जो गहन रहस्य खोले हैं, अब हम उन पर प्रकाश डालेंगे। उसमें से एक यह है कि मनुष्य आत्मा कर्मों का फल सदा मनुष्य योनि में ही भोगती है। वह बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों इत्यादि योनियों में नहीं जाती। इस विषय में मौत से पहले क्या और मौत के बाद क्या, इस शीर्षक वाली पुस्तक आप पढ़िए। दूसरे, स्वर्ग और नरक कहीं अन्य स्थान पर नहीं है। परमपिता शिव ने अब यह भी ज्ञान दिया है कि स्वर्ग वैकुंठ या सुखधाम पृथ्वी से ऊपर कहीं सूर्य चांद इत्यादि में नहीं है, न ही नरक कहीं पृथ्वी के नीचे है, बल्कि सतयुग और त्रेता युग में ही यह सृष्टि स्वर्ग तथा द्वापर और कलयुग की सृष्टि ही नरक है। सतयुग के नारी और नर ही देवी देवता है, द्वापर में वे मनुष्य हैं और कलयुग में ही वे आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। तीसरा, आहार व्यवहार। परमपिता शिव ने समझाया है कि अन्न न केवल पवित्रता अर्थात सदाचार पूर्ण रीति से कमाया हुआ होना चाहिए और न केवल उसमें तामसिक पदार्थ नहीं होने चाहिए, बल्कि वह पका हुआ भी ब्रह्मचर्य पालन करने वाले तथा योग युक्त लोगों ही के हाथों से होना चाहिए, वरना अन्न दोष लगता है जो कि मनुष्य की मनोस्थिति को डावाडोल कर देता है। सन्यासी लोग तो भिक्षा वृत्ति को अपनी एक मुख्य धारणा मानते हैं, वे भिक्षार्जन द्वारा ही पेट भरते हैं। उनका यह मतव्य है कि इस प्रकार मनुष्यों में लोकलाज नहीं रहती और उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। परंतु परमात्मा शिव ने समझाया है कि इस प्रकार उदर पूर्ति करने से मनुष्य का कर्म खाता पुनः विकारी गृहस्थियों से जुटना शुरू हो जाता है। विकारी लोगों द्वारा पकाया गया अन्न सेवन करने से मनोस्थिति भी उच्च नहीं बनती, अतः इसके परिणाम स्वरूप सन्यासियों का पुनः विकारी गृहस्थियों के पास जन्म होता है। परमपिता शिव ने तो हमें समझाया है कि मांगने से मरना भला, हमारे हाथ सदा देने की मुद्रा में होने चाहिए, सेवा ही हमारा धर्म होना चाहिए और हमें परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर कर ही भोजन पकाना तथा खाना चाहिए। चौथा, विवाह। लोग मानते हैं कि यदि एक स्त्री का नियम रहे तो विवाह भी ब्रह्मचर्य के समान है, परंतु परमात्मा शिव ने समझाया है कि संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही योगी का परम धर्म है। काम विकार में प्रवृत्त होने वाला भोगी ही है, उसे योगी नहीं कहा जा सकता। अतः संगम युग में गृहस्थ होते हुए भी यदि कोई योगी बनना चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही होगा, यहां तक कि यथासंभव योगी को विकारी के नाते जोड़ने के कार्यों में भी अपनी बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। हाँ, दृष्टि तथा वृत्ति के इधर उधर भटकने की तुलना में गृहस्थ अधिक ठीक है, परंतु ईश्वरीय स्मृति के आनंद में लवलीन होने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। किंतु ब्रह्मचर्य का भी पूर्णतः पालन केवल उपदेश सुनने से नहीं हो सकता, बल्कि जिसकी आत्मा ज्ञान से जग जाती है तथा योग द्वारा जो व्यक्ति आनंद रस चख लेता है वही आत्मनिष्ठा द्वारा इसका पालन कर सकता है। पांचवा, कर्म और इच्छा। कई लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कर्मों के कारण और कर्म इच्छाओं के कारण होता है, अतः वे ये कहते हैं कि इच्छाओं और कर्मों का त्याग कर दो ताकि जन्म मरण से छूट जाएं और इस दुखमय सृष्टि से मुक्ति मिल जाए। परंतु परमपिता शिव ने समझाया है कि इस सृष्टि को हमने ही अपने बुरे कर्मों से दुखमय बनाया है, वरना यह आदिकाल से दुखमय नहीं थी, अतः अब इसे अपने कर्मों द्वारा सुखमय बनाना भी हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके लिए सर्व इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत नहीं, परंतु विकार जनित इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत है अथवा आसक्ति को छोड़ने की जरूरत है। पदार्थ की तृष्णा तो तृष्णाओं को छोड़ने की जरूरत है। छठवें, कर्मों से संस्कार बनते हैं। प्रायः लोग यह नहीं जानते कि आज हमारे जो संस्कार है वे अनेक जन्मों के कारण ही है, अतः अब उनको बदलने के लिए हमें पुनः कर्म करके ही दिव्य संस्कार बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि हम अहंकार से संस्कार से मुक्त होना चाहते हैं, अहंकार के संस्कार से मुक्त होना चाहते हैं, तो रात दिन अब हमें अहंकारोत्पादक परिस्थितियों में भी निरअहंकारी स्थिति में तथा नम्रता पूर्वक व्यवहार करना होगा। अनेक बार उन परिस्थितियों में पवित्रता पूर्वक व्यवहार करने से ही हमें अहंकार के स्थान पर नम्रता रूपी संस्कार की स्थापना और परिपक्वता होगी। अतः कर्म छोड़ने से हमें महानता नहीं आ जाएंगी, बल्कि आसुरी संस्कार कुछ काल के लिए छिप से जाएंगे। कर्म करके ही हमें उनको सुधारना होगा। कई प्रकार के संस्कार करने से ही हमारे संस्कार नहीं बदल जाएंगे, बल्कि इन संस्कारों को उभारने वाली परिस्थितियों में अब ज्ञान तथा योग के बल द्वारा इन्हें परिवर्तन करने का पर्याप्त काल के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सातवां, संगम युग में किए गए कर्म का कई गुना फल। कर्मों तथा उनकी गति के संदर्भ में परमपिता शिव ने हमें यह भी समझाया है कि कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के संधि काल में जो कर्म ईश्वरीय ज्ञान बल तथा योग बल के आधार पर किए जाते हैं उनका फल कई गुना होकर कर निरंतर दो युगों तक सुख और शांति के रूप में मिलता है। क्योंकि वे सत्य स्वरूप परमात्मा की स्थिति में रहकर उसके मत पर चलकर तथा उसके संग में रहते हुए तथा उसका सहयोगी बनकर किए जाते हैं, इसीलिए उन्हें ही सत्कर्म कहा जा सकता है। सत्य स्वरूप परमात्मा के संग में अथवा उनकी सम्मति से किए गए कर्मों से ही सतयुग की स्थापना होती है। यही वे कर्म है जिससे कि प्रकृति में भी सत्वगुण उद्दीप्त होते हैं, नर नारी के संस्कार भी सत्व प्रधान बनते हैं और पशु पक्षियों में हिंसा वृत्ति का अंत हो जाता है। परमात्मा के संग के बिना कर्म सत्कर्म में परिवर्तित हो ही नहीं सकते। ऐसे कर्म जब होते हैं तब सृष्टि में तमोगुण या झूठ समाप्त हो जाता है। एक भी मनुष्य जब परमात्मा के संग अथवा मत पर चलता है और सत्कर्म करने लगता है
तो फिर यह क्रिया माने की प्रोसेस रुक नहीं सकती, बल्कि उसके संग में आने वाले और नर नारी भी सत्कर्म करने वाले बनते जाते हैं। इसके फलस्वरूप सतयुग अथवा कृत्य युग आ जाता है। अतः निश्चित रूप से सत्कर्म परमात्मा ही के प्रभाव का फल है और विकर्म माया अर्थात छह विकारों की ही प्रवेशता का परिणाम है। विकार रहित कर्मों से ही सुख और शांति। सुख और दुख का संबंध किसके साथ है और किस रीति से उत्पन्न होता है, यह जानने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में पल पल हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। सुख और दुख कर्मजन्य है और इनका संबंध सीधा कर्म के साथ है। कर्म करते समय जैसी भावना होगी, जैसा उसका साधन होगा, तद अनुसार ही उसका फल होगा। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही होगा। अतः सदा काल के लिए सर्वश्रेष्ठ सुख की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कर्मों की आवश्यकता है। जब तक बुरे कर्मों में पूर्ण परिवर्तन न आए, तब तक पूर्ण सुख का अनुभव कदापि नहीं हो सकता। कर्म की महिमा। बहुतों की यह मान्यता है कि सुख एवं दुख दोनों परमात्मा ही देते हैं और इस रीति से वे ईश्वरेच्छा कहकर स्वयं को निर्दोष ठहराने की कोशिश करते हैं, परंतु वास्तव में इस प्रकार ईश्वरेच्छा कहना भी निर्बल अथवा मिथ्या ज्ञान वाले मनुष्यों की अपनी मनोवृत्ति का प्रतीक है। परमात्मा की महिमा सदैव सुखकर्ता एवं दुखहर्ता जैसे शब्दों से की जाती है, न कि सुख एवं दुखदाता इत्यादि शब्दों से। अगर सुख के साथ दुख भी परमात्मा ही देते, सुख के साथ दुख भी परमात्मा ही देते होते, तब तो उनकी महिमा की आवश्यकता ही न रहती। क्या कभी कोई व्यक्ति सूर्य को प्रकाश एवं अंधकार दोनों ही को देने वाला मानता है? कदापि नहीं। सूर्य का कार्य सदैव प्रकाश देना और अंधेरे को भगाने का है। बस इसी प्रकार परमात्मा भी सुखकर्ता एवं दुख हरता है। जब जब मनुष्य दुखी होता है, तब तब वह परमात्मा को पुकारता है। इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा का कार्य दुख से छुड़ाने का है, दुख के बंधनों में जकड़ने का नहीं है। परमात्मा सुखदाता तो अवश्य है, परंतु कर्मों के सिद्धांतों को वे भी नहीं तोड़ते हैं। इसीलिए ही तो वे कहते हैं कि मैं जो मत दूं उसके अनुसार कर्म करोगे तभी सुखी बनोगे। इस प्रकार आचरण अर्थात कर्म महिमा उन्होंने भी बताई है। अतः दुख के नाश एवं सुख की प्राप्ति के लिए पवित्र प्रवृत्ति की ही अपेक्षा रहती है। सुख के लिए ज्ञान को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। बहुतों की मान्यता है कि ज्ञान से सुख मिलता है, अतः सुख की प्राप्ति के लिए वे ज्ञानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु वास्तव में ज्ञान तो समझ ही का दूसरा नाम है। नॉलेज समझ अथवा ज्ञान तो साधन है, साध्य नहीं। ज्ञान लेने के बाद भी कर्म को श्रेष्ठ करने की आवश्यकता तो फिर भी रहती ही है। अतः याद रहे कि ज्ञान को भी आचरण एवं व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। दुख की निवृत्ति संकल्पों को जीतने से नहीं होती। सुख एवं दुख का अनुभव मन द्वारा होता है। इससे बहुत लोगों की यह धारणा हो गई है कि मन को जीतने से दुख को जीत सकेंगे, किंतु मन तो एक साधन मात्र है जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं। मन का कार्य संकल्प करना है। संकल्प तो उठेंगे ही। उपनिषद में यह जो लिखा है कि परमात्मा को नई सृष्टि रचने का संकल्प उत्पन्न हुआ, इससे सिद्ध है कि संकल्प तो परमात्मा भी करते हैं। संकल्प तो देवताओं के मन में भी उठते हैं। विकल्प और विकर्म ही दुख का कारण है, अतः दुखों को दूर करने के लिए संकल्पों को नहीं बल्कि मन में जो विकार युक्त संकल्प चलते हैं उन्हें जीतने की जरूरत है। ये विकल्प ही माया जाल है। माया प्रकृति या धन संपत्ति का नाम नहीं है बल्कि विकारों ही का दूसरा नाम है। मुख्य रूप से विकार पांच ही है जिनके नाम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अशुद्ध अहंकार है। विकार के वश जो विचार चलते हैं उनको विकल्प अथवा दूषित संकल्प कहते हैं और विकार युक्त जो कर्म हो उन्हें विकर्म कहा जाता है। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए हमारे जो कर्म है उन्हें विकर्म न बनने देते हुए सत कर्म करने का पुरुषार्थ करना चाहिए और उनके लिए आवश्यक ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान एक साधन है और उसे साधन रूप में प्रयोग में लाने से ही ज्ञान की सार्थकता बढ़ेगी और तभी ज्ञान भी फलीभूत होगा। ओम शांति।